सभी का आबू की इस पावन भूमि में और ज्ञान सरोवर के इस शांत परिसर में बहुत बहुत हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। और निश्चय ही देख भी रहे हैं कि प्रकृति भी कितना साथ दे रही है ना। तपती हुई जो सारी धरती है उसको यहाँ पर आकर के जैसे शीतल बौछार के बीच में परमात्मा की किरणें भी हम सब पर पड़ रही हैं और हम सब धन्य धन्य हो गए हैं। और ऐसे वातावरण का हम सभी लाभ लेकर के यहाँ से जाएंगे तो हम सब कितने खुश नसीब हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं एक बहुत खास उद्देश्य से। आप सभी का जो यहाँ विशिष्ट मेहमान पधारे हैं, शिक्षाविद पधारे हैं, भारत के कोने कोने से यहाँ पर आप आमंत्रित होकर आए हैं, आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। और हम सभी यहाँ पर बहुत नई नई चीजें सीखेंगे, जानेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान क्या है उसके बारे में जानेंगे, मूल्य शिक्षा क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में भी 3 दिन हमारा ये कॉन्फ्रेंस रहेगा। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेटर्स जो स्पेशली हर साल हम आयोजित करते हैं, और इस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा सदा से यही उद्देश्य रहा है कि जिस प्रकार आज का मनुष्य बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है अपने जीवन में, उनका सामना हम कैसे करें। हम सब ने ही शिक्षा ली है, शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उस शिक्षा से हम सफलता तो पा लेते हैं, जीवन में धन भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करें, वो मूल्य शिक्षा, वो आध्यात्मिकता ही हमको सिखाती है। तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो हमारे साथ आज इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बहुत सारे ऐसे विशेष स्पीकर्स जुड़े हैं जो हमें इन सारी बातों का ज्ञान देंगे और हम उनसे पूरा लाभ लेंगे। कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे आज के वक्ता हैं, मैं उन्हें निमंत्रण देना चाहती हूं कि वो आकर के स्टेज पे अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले डॉक्टर बीके लोगनाथन भाई, आप प्रिंसिपल हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आबू रोड के, मंच पर आप अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर एजुकेशन विंग RERF माउंट आबू। बीके लक्ष्मी बहन, एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग हांसी। डॉक्टर राजेश दीक्षित, वाइस चांसलर फॉर रेनेसेंस यूनिवर्सिटी इंदौर। डॉक्टर अमर प्रकाश गर्ग, वाइस चांसलर फॉर शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। बीके अनुराधा बहन, एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग मुंबई। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लाय, डेप्यूटी डायरेक्टर चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। डॉक्टर मधुकर एम वावड़े, डेप्यूटी डायरेक्टर AICTE दिल्ली। और आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जो चेयरपर्सन है हमारे इस रिसेप्शन सेशन के, कुछ ही देर में दीदी जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। और इस रिसेप्शन सेशन को हम स्टार्ट करेंगे प्रभु स्मृति के साथ, तो 2 मिनट हम सभी परमात्मा की याद में बैठेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु परमात्मा शिव का, जिसके संकल्पों की ये सब रचना है। और हम देख रहे हैं कि सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए किस प्रकार ये आध्यात्मिक कार्य चल रहा है। मनुष्य के जीवन में निश्चय ही शिक्षा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और जब से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है तब से हमने यही जाना है कि मनुष्य का जीवन केवल धन कमाना, सुख की प्राप्ति, परिवार का नियोजन और इसी प्रकार चलता आया है। लेकिन जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तब हमें ये जागृति आती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य अपनी स्व की उन्नति, स्व को जानना कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। मेरा वो पिता कौन है जिसके साथ मेरा अटूट संबंध है, यही आध्यात्मिक ज्ञान फिर हमारे जीवन में मूल्यों को लेकर के आता है। ये वही मूल्य है जिनसे आज हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। और बचपन से हमें ये मूल्य कौन सिखाए, कैसे सिखाए? क्योंकि अगर ये मूल्य हमें सिखाए जाते तो समाज का इतना पतन ना होता। एक शिक्षाविद होकर के, शिक्षक होकर के, हम सभी आत्माओं पे बहुत बड़ा मदार है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे परिवर्तन से ही सारी दुनिया परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि भविष्य हम सबकी क्लासरूम्स में ही बन रहा है। वो क्लासरूम्स जो फ्यूचर, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का भविष्य बनता है, वो पढ़ते हैं, वो किनको फॉलो करते हैं, इनसे सीख रहे हैं, वो हमसे ही सीख रहे हैं और हमें ही कंटिन्यूस नोटिस करते हैं। हमारी एक एक चीज को वो कॉपी करते हैं, इसलिए हमें नियमित ये देखते रहना है कि अगर मैं जो कुछ करूंगा, एक शिक्षक बनकर के दूसरों को सिखा दूंगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो इन्हीं मूल्यों का ह्रास होने के कारण, कमी होने के कारण हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं बचती है कि हम किस प्रकार परिवर्तन करें, किस प्रकार से उनका सामना करें। आज इस विषय पर हम गंभीर रूप से बात करेंगे और हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट लोग जुड़े हुए हैं। उनका सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों को निमंत्रण देती हूँ कि आप बुकेज और बैजेस से हमारे विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करें। मधुबन का विशेष ग्रुप है जो नियमित सभी प्रोग्राम्स में चार चांद लगाने के लिए पहुंचते हैं, हमारे आदरणीय भ्राता सतीश जी, नितिन भाई जी और उनके साथ वितेंद्र भाई और उनके ग्रुप, शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए मधुरवाणी ग्रुप।
ओम शांति, ओम शांति। मूल्य और आध्यात्मिकता दोनों का संयोग बना शिक्षा में संयोग बना, चलो सफलता से करें चुनौतियों का सामना, परम सद्गुरु के दर गुरुजनों का ये आवना, और ज्ञान सरोवर में स्वागत ये मौसम करता सुहावना, स्वागत मौसम करता सुहावना, स्वागत मौसम करता सुहावना। तालियों के साथ अभिनंदन कर सकते हैं।
सरोवर में स्वागत ये मौसम करता सुहावना, मौसम करता सुहावना। जीवन का जो लक्ष्य बताए, जीने का उद्देश्य सिखाए, जो निज की पहचान कराए, प्रेम से जो रहना सिखलाए, वर्तमान जो सफल करे, वर्तमान जो सफल करे, भविष्य उज्ज्वल दे बना, ज्ञान सरोवर में स्वागत ये मौसम करता सुहावना, मौसम करता सुहावना। मूल्य आध्यात्मिकता का शिक्षा में सहयोग बना, चलो सफलता से करें हम चुनौतियों का सामना, चुनौतियों का सामना।
ये तालियां आपके अंतर्मन की प्रसन्नता व्यक्त करती है।
ऐसी शिक्षा ऐसा शिक्षा ऐसा शिक्षालय कहाँ, विश्व को जो दे बदल विश्वविद्यालय यहाँ, स्वर्ग की स्थापना की, स्वर्ग की स्थापना की बन रही प्रस्तावना, ज्ञान सरोवर में स्वागत ये मौसम करता सुहावना, मौसम करता सुहावना। मूल्य आध्यात्मिकता का शिक्षा में संयोग बना, चलो सफलता से करें हम चुनौतियों का सामना, चुनौतियों का सामना। सदा मगर मा पगर का सारे सारे सनी रे घर सदा मगर माँ मगर सर सा आए शिक्षा के साथ में दीक्षा दे संस्कार दे कर्मों से सिखाए सबको स्नेह दे और प्यार दे वो पिताश्री का जीवन वो पिताश्री का जीवन सबके लिए आदर्श बना ज्ञान सरोवर में स्वागत ये मौसम करता सुहावना मौसम करता सुहावना मूल आध्यात्मिकता का शिक्षा में सहयोग बना चलो सफलता से करें हम चुनौतियों का सामना स्वागत है ये सुहावना 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 स्वागत है ये सुहावना
स्वागत है सुहावना बहुत बहुत धन्यवाद मधुर वाणी ग्रुप का आपने अपने मधुर गीत द्वारा कितनी मधुरता इस वायुमंडल में घोल दी है और अभी शब्दों द्वारा स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर बीके लोकनाथन भाई का आप खुद डिवाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं और खुद प्रिंसिपल भी हैं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आबू रोड में मैं आपको निमंत्रण देती हूं कि आप सभी हमारे मेहमानों का स्वागत करें
ओम शांति आई एक्सटेंड ए वार्म वेलकम टू एवरीवन टुडे इज द मोस्ट ऑस्पिशियस डे बिकॉज The Divine Conference has begun. First of all, I welcome the Almighty. May His presence be filled with everyone throughout the program. Next, Rajyogini Dr. Nirmala Devi is about to come. She is the authority of spiritual knowledge. In her long journey, she has accumulated lot of spiritual wealth and divine experiences, and her words of blessings would create chain reactions in within everyone. So, in advance, I welcome Didi. Next, today's topic is on challenges. How to overcome the challenges? So challenges are continuously on the rise and the challenges are inevitable. Today, whoever is having strength, they can overcome the challenges, they can convert the challenges into opportunity. But those who are weak, they are end up with the troubles. Now, in our amidst, the respected Vice-Chancellor of Financial University, Dr. Rajesh Dixit, he will give his motivational speak to strengthen ourselves so that we can overcome the challenges without much difficulty. Next, we know that India is the center of attraction for over a period of many thousand years because of its spiritual values and divinity. But recently we have lost. We are not having that much values and spirituality in our life. That is why we all have assembled here to enrich our spiritual wealth, our inner wealth. Our honorable, respected Vice Chancellor Amar Prasad Garg is present and he will enlighten us with the inner wealth. Next, education is man-making. Education is self-empowerment. Swami Vivekananda told, education is not just transferring information. It is making every individual to experience their inner potential so that the empowered persons can do anything in the society that will be fruitful. So to empower everyone, amidst us, Professor Radhakrishnan Pillai is here. On behalf of everyone, I welcome you, sir. Education Wing is continuously organizing many programs throughout the year. Our sister Suman is national coordinator. So every year this program, Gyan Surovar Educator Conference program, is organized by her. And she is present here. She is going to brief about Brahma Kumaris and education activities. On behalf of everyone, I welcome Sister Suman. Welcome, sister. Of course, today's topic is values and spirituality for overcoming challenges. So on this topic, to give the gist of this topic, we all know for a long period of time in the history also we have seen. So whenever there is a great challenges, thus whoever is having great powers, they are using miraculous power, divine power, they are doing miracles. They have cured the disease, they have done a lot of things. Similarly, this is the values and spirituality is the divine magic wand through which every problem can be overcome. So on this topic, to enlighten everyone, Sister Lakshmi is present here. On behalf of everyone, I welcome Sister Lakshmi. Meditation is inner journey, and whenever we are going on a journey, if somebody is holding our hand and taking us towards the destiny, it will be a nice journey. And for our inner journey, to make our inner journey comfortable, Sister Anuradha has come. She will guide us towards the inner journey and we will experience nice experience. Knowledge is wealth. Say this is the knowledge economy. So today people say that if you have knowledge, you can accumulate any number, any amount of wealth. Today the world has changed towards knowledge economy. And whenever we have spiritual wealth, see this knowledge of wealth, the individual can accumulate more wealth. When the individual accumulating spiritual wealth, they can make everyone else wealthy. So to give the wealth of knowledge, amongst us, Professor Madhukar has come. On behalf of everyone, I welcome you, sir. And this program, Sister Sivika is coordinating this program nicely. She is the headquarters coordinator. She is holding the responsibility of education wing with all the others. And now she is nicely organizing this evening program. On behalf of everyone, welcome you, sister. And see, professors and educators from all over the country has assembled here. Actually, you are the pillars of higher education and you are supporting India through your sustained effort. And you all have assembled here to exchange and participate your views with others so that at the end of this conference, every one of us will be enriched with rich knowledge of world as well as spirituality, so that we can go with new vigor and establish a better society through our knowledge. So on behalf of everyone, the pillars of the society, I welcome you all once again. Thank you for the opportunity. Om Shanti.
Thank you so much, Brother Loknathan, for welcoming all of us. Jis prakar se gharon mein पालना घर के वरिष्ठ लोग करते हैं, माता पिता करते हैं, उस प्रकार से इस आध्यात्मिक संस्था में जिसको हम ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, यहाँ भी किस प्रकार से सस्टेनेंस दी जाती है, ईश्वरीय पालना दी जाती है और किस प्रकार से इसका कार्य चलता है। हमारे बीच में आदरणीय दीदी निर्मला उपस्थित हुए हैं, हम हार्दिक आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमर प्रकाश गर्ग, आप वाइस चांसलर हैं शोभित यूनिवर्सिटी के, हम आपका भी स्वागत करते हैं भाई साहब। ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है और क्या कार्य करती है? देश विदेश सब जगह वट वृक्ष की तरह फैली हुई ये संस्था सबके जीवन में मूल्य और आध्यात्मिकता का संचार कर रही है और ये कार्य किस प्रकार से चल रहा है उसके बारे में अवगत हमें कराएंगी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन। एजुकेशन विंग की आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप सीनियर मेडिटेशन टीचर और मैनेजमेंट ट्रेनर हैं ब्रह्मा कुमारीज के। शी इज ऑल्सो एन इलोक्वेंट कॉन्फ्रेंस स्पीकर, लेक्चरर एंड इंटरप्रेटर। शी इज द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन ज्ञान सरोवर एंड फ्रॉम अ वेरी टेंडर एज ऑफ 5 शी केम इन कॉन्टैक्ट विद ब्रह्मा कुमारीज and that was the time when her inclination became intense to know the knowledge, the divine knowledge. She gives lectures on self-managing leadership, stress management, communication skills, living values, and she has traveled extensively in India and abroad, inspiring many souls. So I heartily welcome Sister Suman to give us information about Brahma Kumaris and Education Wing.
Om Shanti. Manchasin, Parmadarniya Nirmala Devi, Sammaniya Manch, aur Sabha mein upasthit, Desh ke kone kone se aaye hue shikshakgan, gurujan, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मौसम सुहावना है, आपके आगमन में बारिश भी हुआ कल, तो ठंडक भी आई, लेकिन आपके आने से डबल हो गया क्योंकि वाइब्रेशंस भी इतना अच्छा हो गया। एक परिवार यहाँ आया तो ये बहुत ही आनंद की बात है, खुशी की बात है। जब यहाँ आप सभी आए, आपको क्या लगता है आप कहाँ आए, क्या आए? घर में आए? आपका घर है ये? रियली? जब इस कैंपस के अंदर आते हैं तो हर कोई ये महसूस करता है ये मेरा घर है, क्योंकि कारण ये है कि यह परमात्मा का घर है। परमात्मा का घर सो अपना घर है, तो इसीलिए ये भावना जागृत होता है। और घर के साथ साथ ये यूनिवर्सिटी भी है, आप सभी शिक्षक हैं, एडुकेटर्स हैं, लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है। आप एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में आए हैं जहां कोई रिलीजन या धर्म की बातें नहीं सुनाई जाती है, लेकिन आध्यात्मिकता की बातें सुनाई जाती है। और आध्यात्मिकता केवल एक कण रस की बात नहीं है, सुन लिया अच्छा लगा लेकिन फिर घर जाकर के भूल गए, ये बात नहीं है। ये एजुकेशन है। एजुकेशन में क्या करते हैं? हर रोज पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम हर रोज स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं, तो इसीलिए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी भी है। इसीलिए इस संस्था का नाम है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और यहाँ आप आए हैं हेडक्वार्टर्स में, और ब्रह्म कुमारी के बारे में बहुत ही डिटेल में कल शाम को आपका सेशन है, कल रात को, तो इसीलिए ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा न बताते हुए मैं इतना ही कहूंगी कि आप एक ऐसी जगह पर आए हैं तो आप अपने मन और तन के परवरिश नरिशमेंट के लिए आप यहाँ आए हैं। निश्चिंत होकर के 3 दिन आप अपना स्टूडेंट लाइफ व्यतीत करिए। आप कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, एक एजुकेटर बनकर के, प्रोफेसर बनकर के, लेक्चरर बनकर के, लेकिन यहाँ आपका एजुकेशन क्या है, यहाँ आप एडुकेटर है या स्टूडेंट है, यहाँ आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहा जाता है। निश्चिंत, स्टूडेंट लाइफ की विशेषता क्या है, निश्चिंतता है, न किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, खाना पकाने की, जाकर के कॉलेज में जाकर के पढ़ाने की कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है, केवल आपको यहाँ जो पढ़ाया जाएगा, नॉलेज दिया जाएगा, विजडम दिया जाएगा, उसको आपको सुनना है और ग्रहण करने की कोशिश करनी है, है ना। तो ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ साथ एक और सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत 20 विंग्स हैं, 20 विंग्स हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लिए ये बनाई गई है, अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताने के लिए बनाई गई है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के लिए अक्सर करके लोगों के मन के अंदर ये भ्रम रहता है, तो शायद स्पिरिचुअलिटी को अपनाएंगे तो घर बार छोड़ना पड़ेगा, प्रोफेशंस को छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाकर के बैठना पड़ेगा, तब जाकर के आध्यात्मिकता हमारे अंदर घुसेगी। नहीं, हम यहाँ कहते हैं नहीं, सब कुछ करते हुए, अपनी जवाबदारियों को निभाते हुए जब आप आध्यात्मिकता को अपनाएंगे, आपके चैलेंजेस, आप अपने चैलेंजेस को अच्छी रीति आप सामना कर सकते हैं। अगर सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके जंगल में जाएंगे, कोई चैलेंजेस होंगी वहां? चैलेंजेस नहीं। जब आप कर्म क्षेत्र पर है तभी आपके चैलेंजेस से, वहां रहते हुए जब आप मेडिटेशन करेंगे तो फिर उन चैलेंजेस को सामना करने के लिए आपके अंदर वो ताकत आती है। तो उस 20 विंग्स में से एक विंग है एडुकेशन विंग, और एडुकेशन विंग के लक्ष्य बहुत सुंदर है। एडुकेशन में हम क्या ले आना चाहते हैं, वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वही एक चीज है जो इसमें मिसिंग नजर आ रहा है, इसकी बहुत आवश्यकता है पर वर्तमान परिवेश में, क्योंकि हम देखते हैं चारों तरफ चमक दमक और एडवांसमेंट्स, बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहा है, मेडिकल एरिया में एडवांसमेंट्स हो रहा है, बहुत ही इन लीप्स एंड बाउंड्स एवरीथिंग इज गेटिंग एडवांस, एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग, लेकिन विडंबना ये है प्रोग्रेस के साथ साथ जो पर्सनल लाइफ है या फिर रिलेशनशिप्स है वहां कहीं ना कहीं दरार आने लग रहे हैं, डिप्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स जो है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको हम कैसे टैकल करें उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि समाज में हम देख रहे हैं ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ट्रॉमा बढ़ता जा रहा है, फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी, फेलियर, लो सेल्फ डिग्निटी, लैक ऑफ कमिटमेंट, और ये जो सोशल मीडिया के साथ जो बंधन है, उस एडिक्शन है, ये सब चीजें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया के प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, मोर देन 65% पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यंग इंडिया, एंड एवरी ईयर मोर देन 1 लाख पीपल कमिट सुसाइड इन इंडिया, एंड 80% ऑफ द सुसाइड विक्टिम्स आर लिटरेट, अनपढ़ नहीं है वो लोग, पढ़े लिखे हैं, और 80% जो सुसाइड करने वाले हैं वो लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 74%। मर्डर हैज इंक्रीज बाय 7.39% बिटवीन 2017 एंड 18। Kidnapping has increased by 47.80% between 2017 and 18. Crime against women has increased drastically. हम अब सुनते हैं और टीवी में देखते भी हैं। Annual estimate of abortion in India is 1.56 crores, and 89% of drug addicts are literate. वो अनपढ़ नहीं है, लिटरेट है। Assumption or consumption of alcohol in teenagers has increased. India ranks among the most corrupt countries in the world. ये present situation है भारत का, विश्व की तो बात अलग है, लेकिन केवल भारत की जो statistics है ये यहाँ है। तो what do you think is missing? The missing dimension is values and spirituality, morals, values, principles and character. All these are missing in our education system. क्या हमारे education system ऐसा था पहले? बिल्कुल नहीं. पहले हमारा education system बहुत ही एक wholesome था, holistic था. इसीलिए दूर दूर से, विदेश से भी लोग यहाँ आया करते थे तक्षशिला और नालंदा university में पढ़ने के लिए. डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है, destiny of nation is shaped in classrooms. तो जब ये हम सुनते हैं तो हमारी जवाबदारी डबल हो जाती है. जो एजुकेटर्स है उनकी जवाबदारी डबल हो जाती है, क्योंकि दे आर द इंस्पिरेशनल लीडर्स फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर द यूथ. क्योंकि कहीं ना कहीं वो जब मिसलेड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो दूसरी चीजों में आकर्षित हो जाते हैं. अगर एजुकेटर्स इतना पावरफुल है, अगर उनके सब्जेक्ट के साथ साथ वैल्यूज उनके अंदर है, तो उन बच्चों को वापस अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करने की क्षमता एजुकेटर्स रखते हैं. तो इसीलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ये समझनी होगी और उस अनुसार हमें करना होगा. The ancient Indian teachers evolved a special form of education whereby harmony was established between materialism and spiritualism and human life thus headed towards great perfection. Holistic tha, balance tha materialism aur spiritualism ke beech mein, aur wo charo hi areas mein wo knowledge dete the, wisdom dete the. तो इसीलिए इसी लक्ष्य को लेकर के एजुकेशन विंग का एक लक्ष्य है, विजन है, टू ब्रिंग आउट द इंट्रेंसिक गुडनेस विच इज विद इन ईच इंडिविजुअल एंड टू क्रिएट अ बेटर सोसाइटी वेर ईच वन कैन को एग्जिस्ट विद अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस. जब बच्चा कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता है, वो केवल अपने एकेडमिक्स पर ध्यान देता है, फोकस करता है, लेकिन जैसे ही कॉलेज से बाहर आता है, क्या वो जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है? आपका क्या कहना है? तैयार है? एकेडमिक्स के बाहर जब आता है, कॉलेज से बाहर आ जाता है, भले वो पीएचडी करके, डबल डिग्री, ट्रिपल डिग्री लेकर के जब कॉलेज से बाहर आता है, तो जीवन के चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो तैयार है? तो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये उत्तर आता है कि नहीं. केवल वो जो दिन थे, केवल एकेडमिक्स के ऊपर फोकस था, लाइफ के बारे में कुछ बात, कुछ नॉलेज या विजडम प्राप्त किया ही नहीं. तो इसीलिए इसके बारे में फोकस करना बहुत जरूरी है. तो इसी लक्ष्य को लेकर के ये हमारा एजुकेशन विंग, हमारा मिशन है कि टू एनलाइटन ह्यूमन बीइंग्स विद विजडम एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इन डिफरेंट वेज. तो इसीलिए वी हैव कम अप विद डिफरेंट कोर्सेज. मेडिटेशन कोर्सेज है, सेल्फ एम्पावरमेंट वर्कशॉप्स है, पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट है, पॉजिटिव अप्रोच, लाइफ मैनेजमेंट, ये बहुत सारे कोर्सेज ब्रह्म कुमारीज देते हैं. तो ये जो प्रोजेक्ट्स हम एजुकेशन विंग में बहुत सालों से जो हम लोग कर रहे हैं, दिस एजुकेशन विंग एग्जिस्ट सिंस 1978. तब से लेकर के एजुकेशन विंग अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में सेवारत है. सबसे पहले हमारे एजुकेशन विंग का कार्यक्रम शुरू हुआ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से. बच्चों, क्योंकि बच्चों के अंदर वो कैरेक्टर डेवलपमेंट आ जाता है, तो फिर वो बड़े होकर के उनकी जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो सकता है. इसी लक्ष्य से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोग्राम्स हमने शुरू किया माउंट आबू में, और अलग अलग हमारे सेंटर्स में भी समर कैंप्स चलते हैं, और समय प्रति समय बच्चों के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स, अलग अलग गेट टूगेदर्स होते हैं, क्योंकि वी बिलीव कैच देम यंग. जब वो पौधा है तभी हम उसको बेंड कर सकते हैं, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो इसीलिए वी हैव टू कैच देम यंग. तो पढ़ाई के साथ साथ, स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ साथ, अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज, खेल और ये सब, पेंटिंग, इन सभी स्पर्धाएं और प्रोग्राम्स चलते हैं. और यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद 22 से शांतिवन में हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है बच्चों के लिए. करीब 1000 बच्चे वहां आएंगे और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप वो अटेंड करेंगे. और नेक्स्ट प्रकार के जो प्रोग्राम है हम यूजली चलाते हैं वो है ट्रेनिंग फॉर टीचर्स, जो आंगनवाड़ी टीचर्स है, स्कूल टीचर्स है, प्राइमरी टीचर्स है, हाई स्कूल टीचर्स है, उनके लिए हम ट्रेनिंग्स रखते हैं यहाँ माउंट आबू में और अलग अलग जो रिट्रीट सेंटर्स हमारे संस्था के हैं वो अलग अलग जगह पर हम लगातार कंटिन्यूसली, क्योंकि हमने एमओयू किए हैं अलग अलग स्कूल्स के साथ, तो उनके साथ हम अलग अलग ट्रेनिंग्स रखते हैं उनके कन्वीनियंस के अनुसार। और तीसरे प्रकार के प्रोग्राम है अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, जैसे आप यहाँ आए हैं तो उस रीति से हम कॉन्फ्रेंसेस हर साल यहाँ माउंट आबू में ऑर्गेनाइज करते हैं और अलग अलग जगह पर भी, सिटीज में भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में, जिसमें अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर्स, वाइस चांसलर्स, डीन्स, रजिस्ट्रर्स, ये सब यहाँ आते हैं और इस ज्ञान के बारे में सुनते हैं और समझते हैं। और उसके साथ साथ हम अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू किए हैं जो वैल्यूज एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज हम चलाते हैं इन यूनिवर्सिटी के साथ साथ, जिसमें हमारे वैल्यू एजुकेशन स्पिरिचुअलिटी डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, और फिर योगा वैल्यू एजुकेशन है, वैल्यूज इन हेल्थ केयर है, सेल्फ मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट एमबीए है, ये सभी कोर्सेज हम इस यूनिवर्सिटी के साथ हम चलाते हैं और कॉन्वोकेशन भी हर साल यहाँ शांतिवन में हम करते हैं। और फिफ्थ जो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है थॉट लैब के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में कल शाम को आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। ये भी बहुत सुंदर एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चला रहे हैं दो जगह पर, जेसीआरसी जयपुर और नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी दिल्ली में हम चला रहे हैं। और भी जो करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, अपने कॉलेजेस में एक थॉट लैब के रूप में रहेगा तो वो स्टूडेंट्स उसका लाभ ले सकते हैं। और अलग अलग हम एजुकेशनल कैंप्स निकालते हैं, अलग अलग जगह जाकर के हम वैल्यूज के बारे में बताते हैं और अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं, डी एडिक्शन प्रोग्राम्स, कैरेक्टर बिल्डिंग, मेमोरी मैनेज पावर को कैसे कर सकते हैं और रिजिलियंस के बारे में। और अलग अलग सर्विसेज जो हम करते हैं जेल्स में भी जाकर के ये वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम देते हैं, और जो लोअर कैटेगरी है उनको भी जाकर के हम उनके न्यूट्रिशन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, हाइजीन के बारे में भी ये प्रोग्राम्स करते हैं। और एक और प्रोग्राम है, रेसिपी है राजयोग एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर एजुकेटर्स, ये ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम है। अलग अलग जाकर जगह जाकर के हम ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ, मन साफ है तो फिर हम हरियाली जरूर ला सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने हजारों लाखों पौधे शिलान ये किया है और फिर अभी कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इरेडिकेट पोल्यूशन इन द सोसाइटी। और नेक्स्ट प्रकार के जो प्रोजेक्ट है वो है टच द लाइट, ये है एट्थ नाइन्थ टेंथ बच्चों के लिए ये वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है, जो हर हफ्ता कोई ना कोई फैकल्टीज स्कूल्स में जाते हैं आधे घंटे के लिए और वहाँ वैल्यू एजुकेशन के बारे में जानकारी देते हैं और कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में ये क्लासेस लेते हैं। और दिव्य नगरी एक प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, जो 21 सिटीज में चल रहे हैं और वहां हम लोग जो स्लम्स है उसको अडॉप्ट करके उनको हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हाइजीन के बारे में हम ये सारा ज्ञान देते हैं, एंड दिस इज कंटिन्यूइंग स्टिल। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस जर्नी यू आर मोस्ट वेलकम। विद दिस वर्ड्स, ओम शांति।
सेवाएं तो बहुत की हैं लेकिन लगता ऐसा है जैसे सागर में बूंद की तरह है, क्योंकि सारा विश्व पड़ा है जहां सेवा की, ईश्वरीय सेवा की और ऐसी ऐसी योजनाओं की, ऐसे कार्य की आवश्यकता है जिससे हर मानव के जीवन में मूल्यों का संचार हो, उसका जीवन सफल हो जाए। और अभी हमें वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस, इसके बारे में हमें बताने के लिए हमारे बीच में है आदरणीय ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन जी। आप एग्जीक्यूटिव मेंबर एजुकेशन विंग फ्रॉम हांसी, शी इज अ सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर डेडिकेटेड फ्रॉम 42 years in Brahma Kumari organization. She has studied post-graduation MSc in Maths and she has done her BEd from Kurukshetra University. Presently, she is the director of Brahma Kumari Center, Hasi, and the related centers. She is also the zonal coordinator for our jurist wing of Punjab Zone in Raj Yoga Education Research Foundation. She has a specialization in stress management, personality development, art of positive thinking, art of happy living, self-management leadership, and value education spirituality courses. I invite Sister Lakshmi to give a lecture on values and spirituality.
Om Shanti. Ek bar sabhi prem se bolenge. Om Shanti. मंच पर उपस्थित विश्व कल्याणकारी ज्ञान के सागर शिव पिता की प्यारी संतान आदरणीय निर्मला दीदी जी एवं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी महान विभूतियां सभा में उपस्थित शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी महानुभाव आज का विषय वर्तमान समय के अनुसार नितांत आवश्यक है वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर ओवरकमिंग चैलेंजेस। हमारा ये भारत देश प्राचीन काल से देव भूमि रहा है, विश्व गुरु ये भारत रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिने का जो उद्घोष है वो भारत की भूमि से सदा ही पूरे विश्व को मिलता रहा है। और सचमुच में ये भारत देश जहां की महिमा है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन वर्तमान समय उसी भारत देश की छवि हम एक दूसरे रूप में देख रहे हैं। एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर है, मनुष्य ने मानव जीवन की सभी ऊंचाइयों को छू लिया है, लेकिन दूसरी तरफ आज के समय में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनैतिकता और अत्याचार की जैसे आंधी सी चल रही है। और इतनी सारी उपलब्धियों को भी जिसने बिल्कुल मूल्यहीन कर दिया है, ऐसे समय पर सबको एक जो आशा की किरण दिखाई देती है वो हमारे शिक्षाविदों की तरफ उस नजर से निहारता है कि शायद इनके द्वारा ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और वैसे भी जो शिक्षक है वो राष्ट्र निर्माता है। एक शिक्षक राष्ट्रपति को भी तैयार कर सकता है और राष्ट्रपिता को भी तैयार करता है। सभी जो क्षेत्र हैं आज के समाज में, चाहे कोई बड़े से बड़ा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, सभी शिक्षा के जगत से ही गुजर करके उस स्थान पर पहुंचते हैं। और इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर ये कहा गया है कि शिक्षक का जो स्थान है वो कितना ऊंचा है, उसकी महिमा की है कि शिक्षक जो है वो एक ऐसी प्रेरणा का स्रोत है कि वो जो चाहे वो समाज का नक्शा बना सकता है। इसलिए ऐसे हमारे जो शिक्षाविद हैं उनको अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा करना है कि जिससे शिक्षा का जो लक्ष्य है उसे संपूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके। शिक्षा का बहुत महान उद्देश्य है जो हमने अपनी जो भी एजुकेशन होती है उसके अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर बड़े अनुभवी लोगों की जो शिक्षा के प्रति डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है। शिक्षा वो है जो मनुष्य को सब बंधनों से मुक्त करती है, सा विद्या या विमुक्त ये। और एजुकेशन क्या है, वो मानव को एक ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हर रूप से जो विद्यार्थी को संजोती है, पोषण करती है, तैयार करती है। टू ड्रॉ आउट द बेस्ट फ्रॉम विद इन, जो एक स्टूडेंट के अंदर बेस्ट है उसे बाहर निकालना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। और आने वाली जीवन की चुनौतियों का वो सामना कर सके, अपने जीवन को बहुत इज्जत से, सम्मान से जी सके, उसके लिए तैयार करना, ये शिक्षा का उद्देश्य है। केवल रट करके एग्जाम पास कर लिया, एक पेपर हाथ में आ गया और ये कहे कि मैं एजुकेटेड हूं, केवल इतना ही नहीं, हम अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखें तो वो एक समय था जब राज सत्ता भी गुरु के आगे झुकती थी, नमन करती थी। श्री राम को भी जब कोई परामर्श लेना होता था तो अपने गुरु वशिष्ठ की झोपड़ी में जाकर के नतमस्तक होकर के उनसे परामर्श लेता था। तो गुरु का जो स्थान था वो कितना ऊंचा था, और आज भी वही स्थान है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन लाने की जरूरत है जिससे हम आज के समय की चुनौतियों का सामना कर सकें। और उसमें विशेष रूप से जो मुझे अंदर से एक महसूस होता है कि आज हमारे जो विद्यार्थी हैं, या घर में भी जब बच्चा आता है तो पेरेंट्स उससे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं कि तुमने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर कौन सा रैंक प्राप्त किया, फर्स्ट आए कि नहीं, तुम्हारे मार्क्स कितने आए, तुम्हारा ग्रेड कौन सा है, वो चीजें बार बार पूछी जाती हैं। अगर बच्चा सेकंड आया तो उसे डांट डपट पड़ती है, और ये चीज जो है बचपन से उसके संस्कारों में डाल दी जाती है। जब एक छोटा सा बच्चा लोअर केजी में होता है, वो किसी रेस में भाग लेता है, आप सबने भी की होगी, मुंह में चम्मच रख के उसमें नींबू रख करके दौड़ते हैं, तो पेरेंट्स भी और टीचर्स भी उसको बैकअप करते हैं, जल्दी भागो, जल्दी दौड़ो, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना। तो एक छोटा सा बच्चा जो है उसके अंदर ये एक उसके जहन में ये चीज बैठ जाती है कि मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को खुशी तब होगी जब मैं अव्वल आऊं, फर्स्ट आऊं। और उसी मेंटेलिटी के साथ जब वो बड़ा होता है, 21 साल का हो जाता है, नौजवान हो जाता है, तो उसका जो नजरिया होता है वो केवल ये होता है कि मुझे सबसे आगे रहना है, मुझे अव्वल आना है, औरों की परवाह नहीं करता है। तो अगर बचपन से ही माता पिता और एजुकेटर्स हर विद्यार्थी के अंदर ये संस्कार डालें, ये प्रश्न पूछें घर में आते ही कि आज तुमने अच्छा क्या किया, किसी की मदद कितनी की, किसी के चेहरे पर खुशी लाई, आज के दिन तुमने कोई एक्ट ऑफ गुडनेस किया, अगर इस प्रकार से उससे पूछेंगे तो उस बच्चे को लगेगा कि मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे एजुकेटर्स के लिए सबसे जरूरी ये है कि मैं कुछ अच्छा क्या करता हूं, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हूं, किसी की हेल्प की मैंने, वो चीजें अच्छी लगती हैं। और वो बच्चा जब बड़ा होगा, 21 साल का होगा, 22 साल का नौजवान होगा, और उसके साथ के सारे बच्चे जब नौजवान होंगे तो हमारी ये सारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि उस समय उसका नजरिया क्या होगा, वो सेल्फिश नहीं होगा, वो दूसरों के बारे में सोचेगा। तो हमें जरूरत है बच्चों के अंदर ये संस्कार डालने की, क्योंकि माता पिता आज बच्चे के लिए कितना कुछ सोचते हैं, सब कुछ सिखा दें, समर वेकेशन में भी सोचते हैं ये हॉर्स राइडिंग भी सीख ले, ये जो है ना स्विमिंग भी सीख ले, सब कुछ, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को आर्ट ऑफ लिविंग, सुख में जीवन जीने की कला भी सिखाएं और उसके लिए आध्यात्मिकता और वैल्यूज की नितांत आवश्यकता है। जब हम आध्यात्मिकता शब्द कहते हैं तो बड़ा संकुचित सा दृष्टिकोण होता है हमारा कि कुछ पूजा पाठ कर लिया, माला फेर ली, कोई मंत्र जाप कर लिया। लेकिन अध्यात्म का अर्थ है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्टडी ऑफ स्पिरिट। हम सबके अंदर एक आत्मा है और हम सब सुप्रीम सोल, सुप्रीम स्पिरिट, उस ईश्वर पिता की संतान है। और इससे एक भाव जागता है कि ये संपूर्ण विश्व अपना ही परिवार है। वहां प्रेम पैदा होता है, वहां भाईचारा पैदा होता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, मैं आत्मा, ये सब आत्माएं और हम एक पिता की संतान, पूरा विश्व अपना है, हमें ये सिखाती है, जोड़ती है। स्पिरिचुअलिटी धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, क्योंकि धर्म का भी जो वास्तविक अर्थ था वो था जीवन में कुछ धारण करें। लेकिन आज हम उससे दूर हो गए और धर्म के नाम पर हम बटते गए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये अपना है, ये पराया है, और धर्म के नाम पर भी हिंसा और समाज के अंदर विकृतियां आ गई। तो स्पिरिचुअलिटी धर्म से ऊपर है, जो सब धर्मों के लिए है, सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका पिता एक ईश्वर है, हम एक पिता की संतान है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर सब वैल्यूज आ जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज एसेंस ऑफ ऑल वैल्यूज। जहां आध्यात्मिकता है, जहां आत्मिक भाव है, वहां प्रेम है, वहां शांति है, वहां एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है। और उस स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारने के लिए, उन वैल्यूज को जीवन में उतारने के लिए हमें मेडिटेशन करने की जरूरत है। हम अपने स्टूडेंट्स को भी स्कूल या कॉलेज के अंदर और घर में भी अगर इस चीज की तरफ प्रेरित करें, अगर 10 मिनट भी प्रतिदिन मेडिटेशन करते हैं तो उससे मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। और जिसका मन सुखी है, शांत है, उसके तन की बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस भी आज इस चीज को मानती है कि 80% बीमारियों का कारण, और वर्तमान जो रिसर्च है वो तो ये बताती है 100% जो बॉडी की जो बीमारियां हैं उनका कारण भी मन का तनाव है। तो इसलिए मेडिटेशन के द्वारा जब मन शांत होता है, तन की बीमारियां खत्म होती हैं, संबंध मधुर हो जाते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मेमोरी शार्प होती है। इसलिए अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करके स्टडी करते हैं तो उससे एक बहुत बदलाव आता है। तो इस प्रकार से जीवन को मूल्यों से परिपूर्ण करके जब एक स्टूडेंट इस समाज में आएगा, इसका नागरिक बनेगा, तो सचमुच में हमारे इस भारत देश का नक्शा परिवर्तन हो जाएगा। और मुझे इस समय पर एक रामायण का प्रसंग याद आता है। युद्ध कांड में जिस समय श्री राम और रावण आमने सामने दिखाते हैं, वो दोनों शक्तियां खड़ी थी युद्ध के लिए, श्री राम नंगे पांव थे और रावण के पास बहुत उच्च कोटि का ऐसा विमान था जो धरती पर भी चल सकता था, आकाश में भी वायु की गति से चल सकता था। तो विभीषण जब ये देखता है तो उसको अंदर में आता है कि श्री राम जी नंगे पांव इस महान शक्ति का सामना करेंगे। श्री राम जी उसके भाव को समझ जाते हैं और वो अपने उस मित्र को समझाते हैं, विभीषण को, उस समय कि हे मित्र, व्यक्ति जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ लोहे और लकड़ी का नहीं होता है, वो तो एक अलग ही रथ होता है जिसके शौर्य और धैर्य दो पहिए हैं, बल, विवेक, संयम और परोपकार ये चार घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता की रस्सी से उस रथ के अंदर जुड़े हुए हैं। ईश्वर का चिंतन उस रथ का चतुर सारथी है और अपने बड़ों का सम्मान गुरुजनों का पूजन उस रथ का अमोघ कवच है। जिसके पास ऐसा मूल्यों का रथ हो उसे रावण तो क्या, संसार का बड़े से बड़ा अजेय शत्रु भी उसे हरा नहीं सकता है। तो आज हमारे नव युवकों को, आज हमारे समाज को ऐसे वैल्यूएबल रथ की जरूरत है, ऐसे मूल्यों को जीवन में उतारने की जरूरत है जिससे हम अपने भारत देश को फिर से वो स्थान दिला सकते हैं जो इसका प्राचीन गौरव था। किसी ने, कवि ने कहा है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और वो बात क्या है, वो बात क्या है, वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है वैल्यूज, जिनके कारण ये भारत देश पूरे विश्व का गुरु था। और हमें आवश्यकता है फिर से अपने भारत देश को उसी स्थान पर ले जाने की, और उसके लिए सबसे सुंदर सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारा ये शिक्षक वर्ग कर सकता है, उन वैल्यूज का बीज आरोपित करने का अपने विद्यार्थियों के अंदर। क्योंकि स्टूडेंट जो एक शिक्षक के पास आता है वो कच्ची मिट्टी के समान होता है, वो एक कोमल पौधा होता है जिसको पुष्पित करना है, पल्लवित करना है, उसके जीवन को महान बनाना है। ये शिक्षा का और शिक्षक का कर्तव्य है। हम ऐसी आशा रखते हैं कि आप सभी यहाँ से ऐसी ही प्रेरणा लेकर के जाएंगे अपने बच्चों के जीवन को, अपने स्टूडेंट्स के जीवन को और सबसे पहले अपने जीवन को। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो शिक्षक है वो रोल मॉडल है, आप अपने विद्यार्थियों के लिए आदर्श हैं। स्टूडेंट वो करता है जो आप करते हैं, वो नहीं करता है जो आप बोलते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसलिए आपको रोल मॉडल बनने की जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपको सिगरेट नहीं पीना, ये व्यसन छोड़ना है, ये गलत काम छोड़ना है, वो देखता है कि आप क्या करते हैं। जब एक बच्चा ये देखता है कि घर में उसका बाप स्मोकिंग कर रहा है, स्कूल में शिक्षक कर रहा है, फिल्म में हीरो भी स्मोकिंग करता है, वो सोचता है सबसे जरूरी चीज है और ये मुझे ऐसे ही रोक रहे है। इसलिए आप सब आदर्श बनकर के, एक रोल मॉडल बनकर के इस समाज की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। ओम शांति।
बहुत मूल्यवान शब्दों द्वारा आपने हम सबको शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है समझाया। और जैसे कि हम देख रहे हैं समय की सीमाएं हैं, तो हमारे बीच में डॉक्टर राजेश दीक्षित हैं। आप वाइस चांसलर हैं रेनेसेंस यूनिवर्सिटी इंदौर से। हमारे विशिष्ट मेहमान यहाँ पहुँचे हैं, ही इज़ अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स एंड क्वालिफाइड एमपी एसएलईटी एग्जामिनेशंस वो कंडक्ट करते हैं यूजीसी के साथ। ही इज़ अ पीएचडी सुपरवाइजर। He is having administrative experience of 11 years as a principal in Renaissance College of Commerce and Management. He is having 26 years of experience in the field of economics, Hindi and its studies. He is a group head of Renaissance Indira Group of Institutions and he has published research papers in various journals and magazines in the field of economics and Hindi. And he is also a convener for first international and two national conference and many seminars, workshops and FDPs which are organized at Renaissance College of Commerce and Management. I invite Dr. Rajesh Dikshit ji, Vice Chancellor for Renaissance University, to share words of inspiration for us.
Adarniya Rajyogini Dr. निर्मला दीदी, आदरणीय बी के एन राधा जी, आदरणीय बी के लोकनाथन जी, आपसे मेरी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई और बहुत सारी जो मेरी दुविधाएं थी वो समाप्त हुई। आदरणीय बी के सुमैन बहन, आपसे दो क्षण भी कोई मिलता है तो वो आपके नेत्रों की ज्योति का जो जादू है उसको महसूस करता है, उसके लिए धन्यवाद। आदरणीय मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर्स गर्ग साहब, बहन लक्ष्मी जी, अन्य मेरे आदरणीय उपस्थित अतिथिगण और सम्मानी सदन, यहां आने से पहले मैं बहुत दुविधाग्रस्त था। दुविधाग्रस्त इसलिए कि मैं ब्रह्मा कुमारी का नियमित विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं नियमित विद्यार्थी जरूर हूं। नई चीजों को सीखना, समझना, एडॉप्ट करना, ये हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। यहां आने की जब बात हुई तो जैसे कहते हैं गीता में, या निशा सर्व भूतानां तस्याम जागृति संयमी, जब सब रातों को लोग सोते हैं तो कभी कलाकार और योगी तपस्वी जागते रहते हैं। तीन रातों से मुझे नींद नहीं आई, लेकिन जब मैं यहां आया और यहां मैंने प्रवेश लिया तो एकाएक जैसे सब दुविधाएं धुल गईं। मैंने कॉस्मिक रेस के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूं। ऊटी में थोड़े दिन पहले जब मैं गया था तो वहां पर एक सीनियर साइंटिस्ट हैं अतुल जैन, उन्होंने मुझे काफी चीजें बतलाई और उन्होंने खास तौर से ये बताया कि ये जो कॉस्मिक रेस है इसका प्रभाव शिखर पर सबसे ज्यादा होता है। एक नई थ्योरी मैंने गढ़ी है और उस पर काम कर रहा हूं कि कॉस्मिक रेस जो एक किस्म का विकिरण है, रेडिएशन है, उसका पॉजिटिव असर शिखर पर जाकर महिलाओं पर ज्यादा होता है और पुरुष पर उसका उल्टा प्रभाव हो जाता है। यह मैंने अपने देश भ्रमण के अनुभवों से जाना है कि हम जब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां देखते हैं कि स्त्रियां जो है वो अत्यंत सशक्त ढंग से काम कर रही हैं और सारा कारोबार संभाल रही हैं और पुरुष जो है वो लेथार्जिक हो गया है। तो ये जो बात थी ये मेरे मन में यहां आकर फिर से उसने एक बल लिया कि मैंने जब यहां देखा कि ब्रह्मा कुमारीज ने किस तरह से इस पहाड़ी वातावरण को सुवासित न केवल किया है बल्कि पत्थर पर फूल उगाने का एक महत् कार्य भी किया है, मेरे अंदर का एक जो विद्यार्थी था वो फिर से जागृत हो गया। और कल रात को जब 11 बजे बारिश हुई तो मुझे लगा कि ये शुभ संकेत है, मैं ठीक रास्ते पर हूं और ये सब कुछ शुभ शुभ होता चला जा रहा है। इस विषय पर इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं कि मूल्य और आध्यात्मिकता की इन दिनों जो हमारे सामने जीवन के सामने जो चुनौतियां हैं उस पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, उससे पहले मेरे दिमाग में एक ग्रीक मिथ आता है जो मिथ ऑफ सिसिफस कहलाता है। उसमें सिसिफस नाम के एक व्यक्ति को, एक महाबलशाली व्यक्ति को एक सजा मिली थी कि वो एक बड़ा भारी पत्थर अपनी पीठ पर लादेगा और एक पहाड़ की चोटी पर ले जाएगा, वहां उसे स्थापित करना होता था। लेकिन जब वो वहां पहुंचता था और ठीक शिखर पर स्थापित करने के पहले वो पत्थर उसकी पीठ से नीचे लुढ़क जाता था, हर बार वो फिर से नीचे आता था और वो फिर से उस पत्थर को ऊपर ले जाता था, लेकिन शिखर से पहले वो फिर से लुढ़क जाता था। कभी कभी मुझे ये लगता है कि शिक्षकों को भी शायद इसी तरह की एक अनथक सजा मिली हुई है। इसे हम दूसरे अर्थों में कहें तो शिक्षकों का एक दायित्व है लगातार कि वो नई से नई जो पीढ़ी आए उसके साथ में न केवल कदम ताल करें बल्कि उसको कुछ सिखाने का गुरुतर दायित्व निभाएं। अब यहां शिक्षक और गुरु में अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। शिक्षक वो है जिसके जीवन में कुछ न कुछ भौतिकता है, जो अपने रोजी रोटी के लिए वो नौकरी कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो इन सब से इतर किसी को जीवन दर्शन देता है वो गुरु का पद को प्राप्त कर लेता है। और ऐसा रोजाना होता है, मिथ ऑफ सिसिफस उसके जीवन में भी है, वो गुरु का पद प्राप्त करता है, फिर से शिक्षक हो जाता है, शिक्षक होता है, फिर गुरु पद को प्राप्त करता है। तो ये जो दुविधा है वो शिक्षकों के जीवन में लगातार बनी रहती है। और मैं समझता हूं कि जिसके जीवन में दुविधा बनी हुई है वस्तुतः वही शिक्षक है। जिस दिन मैंने ये मान लिया कि मैं वाइस चांसलर हूं, उस दिन मेरा क्षरण शुरू हो जाएगा। जिस दिन किसी ने मान लिया कि वो डीन है, वो डीन से नीचे चला जाएगा। जिस दिन किसी ने मान लिया कि वो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर से नीचे चला जाएगा। जिस दिन किसी ने मान लिया कि वो टीचर है, वो टीचिंग से नीचे चला जाएगा। जब तक वो ये मानता रहेगा कि मैं एक शिक्षक हूं, वो अपने उत्तरोत्तर गति को प्राप्त करता रहेगा। आदरणीय दीदी, हमारे सामने जो इन दिनों समस्याएं हैं और जो आने वाले विश्व की समस्याएं हैं वो है टेक्नोलॉजी, वो है थिंग्स ऑफ इंटरनेट, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें मशीनें हमें गाइड कर रही हैं और उन मशीनों से गाइडेड हमारा जो जीवन है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, हताशा की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखें कि जो नई नई पीढ़ी आपके सामने आती है वो न केवल मानसिक रूप से दुर्बल होती है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी दुर्बल होती है। आध्यात्मिकता तो आप देख पाते हैं, वहां तक शायद उसकी दृष्टि तो पहुंच ही नहीं पाती है। क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्योंकि हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा जीवन जो है दूषित हो गया है। एक सज्जन एक घर पर पहुंचे, वहां पर एक मां बैठी हुई थी और एक छोटा उनका युवा पुत्र था। पुत्र जो है वो किताब पढ़ रहा था, मां बैठकर कुछ चिंतन कर रही थी। उन्होंने पूछा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके घर में कुछ अलग माहौल है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आप बच्चे को क्या कहती हैं ऐसा कि वो मोबाइल छोड़कर किताबें पढ़ रहा है। मां ने कहा कि बच्चे हमारी सुनते कहां हैं, वो तो वही करते हैं जो वो देखते हैं। तो हमारा दायित्व यह है कि हम कर्म के द्वारा उन्हें दर्शन दें। हम एक प्रोग्राम हमारे विश्वविद्यालय में करते हैं सेतु निर्माण, जिसमें एक दुस्साहसपूर्ण हम ये कृत्य करते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो दरार आ गई है उसको समझकर उसको भरने का प्रयास करें। हम उसमें उन स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, पेरेंट्स को बुलाते हैं जिनके बीच में कुछ न कुछ संघर्ष हैं, कुछ समस्याएं हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा समझ नहीं रहा है, ये इन दिनों कुछ पढ़ नहीं रहा है, इन दिनों कुछ ऐसा लगता है कि किसी दूसरे रास्ते पर है, बुलाया जाता है। और आप में से जितने भी अच्छे शिक्षक हैं ये जानते होंगे, ये तथ्य निकलकर सामने आता है कि समस्या बच्चों में नहीं है, समस्या पेरेंट्स में है। बड़ी अजीब बात है, जब आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, जब आप बच्चों को केवल भौतिक चीजें देंगे, जब आप बच्चों के जीवन में मूल्य जैसी चीजों के अंकुरण की जगह ही नहीं रहने देंगे, तो वे तो बच्चे हैं, युवा हो गए हैं, लेकिन अंदर से उनको जो आपने परोसा है वही वो खा रहे हैं। तो समस्या पहले हमें अपने आप को बदलने की है। पिछले दिनों एक पेरेंट्स आए, उनके साथ दो बच्चे थे, छोटा जो बच्चा था उनका, उसका नाम स्पर्श था, आप उसकी उम्र समझिए 10 या 11 साल की होगी। बड़ा भाई ने 12th पास किया था। छोटे बच्चे ने कहा, मैंने जब उससे उसका इंट्रोडक्शन पूछा, हम काउंसलिंग करते हैं जब बच्चे आते तो उनके साथ भी बात करते हैं, कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में आप तो हमेशा यंगस्टर्स के साथ बातचीत करना होती है, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो हमको विशेष सुख मिलता है कि ये एक नई चीज है, उनके साथ इंटरेक्ट करना, जानना, समझना कि नई चुनौतियां क्या होंगी। उसने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं और ऑथर बनना चाहता हूं। ये बड़ी अद्भुत बात थी, एक 10 साल का बच्चा कहे कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, ऑथर बनना चाहता हूं। मुझे शॉक लगा और अच्छा भी लगा। मैंने कहा, बेटा दोनों चीजें आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप साइंटिस्ट बनिए और साइंस के बारे में लिखिए। उसको वो चीज जो है अपील की और मैंने उससे कहा कि एक डायरी लिखना शुरू करो जिसमें आप अपनी चीजें रोजाना शुरू करें। जो बड़े बच्चे की काउंसलिंग थी वो तो एक अलग बात थी, लेकिन शिक्षक अगर रोजाना बच्चों से, टीचर से और उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, इनफॉर्मल लीडरशिप अगर उसके अंदर है, तो वो जान जाएगा कि चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उसको भी इनफॉर्मल लीडर बनना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप 50 साल पुराने उदाहरण से आज की पीढ़ी को कोई ज्ञान दे पाए। आपको उनके जीवन के ध्रुव, उनके जीवन की धुरी बनना होगा। आपको समझना होगा कि किन समस्याओं से वो ग्रस्त हैं, किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। आपका व्यक्तित्व भी उनको उनके व्यक्तित्व के साथ एकाकार करना होगा, और जब आप अपने व्यक्तित्व को उनके व्यक्तित्व के साथ एकाकार करेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनकी भावभूमि पर अपने आप को खड़ा पाएंगे और देखेंगे कि इन दिनों टेक्नोलॉजी ने उनके जीवन को झकझोरा हुआ है। तो आप भी उस टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल कीजिए। हम देखते हैं बहुत सारे टीचर्स को कि वो अपने उस गुरूर में कि मैं शिक्षक हो गया हूं, ये जो चीजें हैं ये समाज को गुमराह कर रही है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप ध्यान दीजिए, आप देखिए, और वहां आप घुसकर उसकी धुरी बनकर आप उसको परिवर्तित कर पाएंगे। आपने साइंस का एक नियम सुना होगा, लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में गति करता है। आपने एक शोपीस देखा होगा जिसके नीचे एक रोटर लगा होता है, वो रोटर घुमाता है, नीचे बल्ब लगा है और ऊपर पतली पतली प्लास्टिक की सीक लगी हुई है, वो एक तरह का पिरामिड जैसा शेप, एक तरह का शंकु जैसा शेप बनाता है। जब वो रोटर घूमता है तो वो जो पतली सीक है वो अपने अक्ष की तरफ झुक जाती हैं, स्ट्रेट नहीं रह पाती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि उसके जो बिंदु हैं वो चमक रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो यहां साइंस ने अपनी चीजों का अतिक्रमण किया नहीं, यहां पर भी साइंस है। टोटल आंतरिक रिफ्लेक्शन जो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, उसने कहीं ना कहीं साइंस के उस नियम को ओवरलैप कर दिया। तो ये जो हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, अगर हम इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कर सकें, करवा सकें, तो आप समझिए कि आपका जीवन चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता हो लेकिन वो शिखर पर जरूर चमकेगा, वो निश्चित रूप से प्रकाशित होगा। आप देखें जब अतिरिक्त जीवन में आता है, ये जो भौतिकता है वो हमारे जीवन में अतिरिक्त लाती है और अतिरिक्त की मांग करती है, अतिरिक्त की चाह हमारे जीवन में पैदा करती है। तो जब आपके जीवन में अतिरिक्त आता है तो आप अपने मूल्यों से भटक जाते हैं, और जब आप अपने मूल्यों से भटकते हैं तो आपके जीवन में गंदलापन आ जाता है। आप देखें जब तेज बारिश होती है तो नदी नाले झरने सबका पानी गंदला हो जाता है, लेकिन जब बारिश थमती है तो फिर जो नदी नाले और झरनों के रेत है, जो उसमें पड़े हुए पत्थर हैं, वो उन सारी गंदगी को उस पानी से अलग कर देते हैं और फिर से निर्मल धारा प्रवाहित होने लग जाती है। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो मूल्य हैं, ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे जीवन में उस शोधक पत्थरों का, चट्टानों का, रेत का कार्य कर रहे हैं। हम अपने जीवन से इन चीजों का लोप न होने दें। शिक्षक को पढ़ना चाहिए, रोजाना पढ़ना चाहिए, उन्हें नई नई चीजों को पढ़ना चाहिए, अपने विषय से इतर चीजों को पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद अपने विद्यार्थियों के साथ उन चीजों के बारे में जरूर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, उससे एक नई बात सामने आती है। मेरी लोग नाथन जी से, भाई से बात हो रही थी, मैंने कहा कि यहां आने से पहले मेरे पास कुछ प्रश्न थे। मैं एथिस्ट हूं, मैं नास्तिक हूं, मेरे जीवन में जो तथाकथित धर्म है उसके लिए कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि उसकी जो तथाकथित बुराइयां हैं वो मुझे रोजाना दिखलाई देती हैं। तो क्या ऐसा व्यक्ति भी आपके सिद्धांतों के साथ मैच कर सकता है? उन्होंने कहा जरूर कर सकता है, क्योंकि जो आध्यात्मिकता है वो जीवन मूल्य है, जो आध्यात्मिक मूल्य है वो जीवन मूल्य है, वो सादगी है, वो प्रेम है, वो सहिष्णुता है, ये जो सारे मूल्य हैं ये सब जीवन मूल्य भी हैं। जिस व्यक्ति ने जीवन मूल्यों को अपनाया हुआ है वो आध्यात्मिक मूल्यों को अपना सकता है, और जिसने आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाया हुआ है वो ब्रह्मा कुमारी को भी अपना सकता है। मुझे इस चीज ने बहुत इंस्पायर किया, इस चीज ने बहुत उत्साहित किया, क्योंकि आप में से अनेक लोग होंगे जो अनेक धर्म, जाति, समाज से अलग अलग ढंग से आए हुए होंगे और अनेक प्रश्नों के साथ आए हुए होंगे। मैं भी आपसे अलग नहीं हूं, मेरे जीवन में भी प्रश्न है, एकाएक किसी चीज को स्वीकार कर नहीं पाता हूं, चाहे वो कितनी भी महान हो, क्यों ना प्रभावशाली हो, लेकिन बड़ी साधारण चीजों को भी मैं जीवन में ग्रहण कर लेता हूं अगर उसने मुझे अपील किया है। तो हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब लोग एक जैसे ही हैं, जो देखते हैं, जब यहां आप आकर देखते हैं कि एक अनुशासन है जो स्वतः स्फूर्त ढंग से इन सारी चीजों को रेगुलेट कर रहा है, आप ऑटोमेटिक उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन जहां पर आपके ऊपर कोई कोशिश करे डालने की, आप उससे भिदक जाएंगे। हमेशा साइंस जो कहता है कि एक्शन के विरुद्ध रिएक्शन होता है, तो यहां वो एक्शन रिएक्शन की स्थिति नहीं है, यहां समानांतर बहते चले जाने की स्थिति है। और इससे पहले कि मैं आप सब लोगों का धन्यवाद कहूं, मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में प्रवेश की है, जिसने मैं चीजों को अब एक अलग ढंग से देखने लगा हूं। चाहे वो बहता हुआ पानी हो, चाहे वो खिलता हुआ फूल हो, चाहे वो कोई निराश व्यक्ति हो, मुझे उसके जीवन के पार जो एक जीवन दर्शन बहता है वो बहता हुआ नजर आता है। इसलिए जब साहिर लुधियानवी ये कहते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी अपने प्रिय व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे, वो किसी अपने से सुप्रीम पावर के लिए कह रहे हैं। जब वो गालिब को कहते हुए सुनता हूं कि बागीचा है अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, तो मुझे लगता है गालिब जो है वो दुनियाई शायर नहीं थे, वो रूहानी शायर थे जो आत्मा परमात्मा से अपनी बात कर रहे थे। मैं अपनी बात को विराम दूं, उससे पहले मैं इंदौर से जिसने मुझे यहां पर आने के लिए प्रेरित किया, शकुंतला बहन, उसको इस मंच के माध्यम से अपना धन्यवाद ज्ञापित करवाना चाहता हूं। मैं सक्षम भाई का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने पूरे समय हमारे साथ रहकर इस पूरे ब्रह्मा कुमारी के विजन को और यहां के कॉन्सेप्ट को समझने में मेरी मदद की। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे शांति से सुना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति। धन्यवाद।
थैंक यू डॉक्टर राजेश दीक्षित जी। मन तो करता था हम सुनते रहे, क्योंकि बहुत कम समय होता है हमारे पास जो आप जैसे स्पीकर्स हमारे बीच में आते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन समय की हमारे पास लिमिटेशंस हैं, तो बाकी भी जो स्पीकर्स हैं थोड़ा समय का ध्यान रखें। अभी हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अमर प्रकाश गर्ग जी को। आप वाइस चांसलर हैं शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ से। ही इज द एक्स प्रोफेसर एंड फाउंडर हेड माइक्रोबायोलॉजी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विद टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस ऑफ 42 इयर्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी and he is known for his research contributions on protection of human hair against fungal infections and development of eco-friendly biobleach process for pulp and paper industry. He is a recipient of Young Scientist Gold Medal Award of IBS. He has published more than 110 research papers and participated in more than 24 international conferences abroad, chaired various academic sessions. Shobhit University Meerut has got a new shape under his leadership and has made significant presence on world academic map. I invite Dr. Professor Amar Prakash Garg to share his words of inspiration.
Adaraniya Didi Nirmala ji, Suman ji, डॉक्टर राजेश जी, बाबा ने जी, अन्य महान भाव मंचा सिंह एवं विद्वान श्रोतागण, जैसा कि मेरे पर्चे में बताया गया है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का छात्र रहा हूं, तो मैं अपनी कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं। स्पिरिचुअली इट इज ए साइंस ऑफ लाइफ, और हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के छात्र स्पिरिचुअलिज्म को एक नजरिया से देखते हैं। पूरी साइंस है ये, हमारी बॉडी के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना हमारे आमाशय में जाता है, स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में जाने के बाद बहुत से माइक्रोब्स आपके स्टोमक में हैं जो उस खाने को पचाते हैं। जितना भी चाहे उसका पचाना है, चाहे खाने को तोड़ना है, चाहे खाने को एब्जॉर्ब करना है, सारी प्रक्रिया ये माइक्रोब से होती है। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर अभी फरवरी 2019 की रिसर्च है कि करीब 2000 डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं, और ये 2000 डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। और आपको ये जानकर के आश्चर्य भी होगा कुछ लोगों को कि वैज्ञानिकों ने अब यह निकाल लिया है कि हमारी स्टोमक के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनमें से बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हैप्पीनेस के बैक्टीरिया हैं। जब उनकी कंसंट्रेशन, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाता है, तो यू फील हैप्पी। ये बैक्टीरिया आपके मूड को डायरेक्ट करते हैं कि व्हेन यू हैव टू स्माइल, कब आपको स्माइल करना है, कब आपको रोना है, कब आपको अच्छा फील करना है, कब आपको हैप्पी फील करना है। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बैक्टीरिया जो हमारे स्टोमक के अंदर रहते हैं। अब ये बैक्टीरिया किससे कंट्रोल होते हैं? अच्छे बैक्टीरिया या बुरे बैक्टीरिया, वो हमारे खाने की हैबिट से होते हैं। जैसा भी हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, उसी से ये बैक्टीरिया, उसी तरह के बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टोमक के अंदर पनपते हैं। तो पूरी स्पिरिचुअलिज्म जो साइंस है, जिसको हम आध्यात्म कहते हैं, ये पूरा आध्यात्म साइंस हमारे खाने से रिलेटेड है। जैसा हम भोजन खाएंगे वैसे ही विचार हमारे अंदर आएंगे। अच्छा भोजन हम खा रहे हैं, अच्छे विचार आएंगे। मानव शरीर के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स हैं, आप सभी के अंदर है। डीएनए है, हम सभी लोग जानते हैं, डीएनए से जीन्स बने हुए हैं। स्पिरिचुअलिज्म के जीन्स सभी इंसान के अंदर मौजूद हैं। कुछ के अंदर एक्सप्रेस होते हैं, कुछ के अंदर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। एक्सप्रेशन इन जीन्स का डिपेंड करता है एनवायरमेंट के ऊपर, दैट इज सोशल एनवायरमेंट। जैसे आप समाज में रहेंगे, जैसी आप सोसाइटी में रहेंगे, उसी सोसाइटी में रहने के बाद आपके ये जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जीन्स एक्टिवेट होने के साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाएंगे। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक आपका खाना, जैसा आप खाना खाएंगे उसी से आपकी स्पिरिचुअलिज्म बनेगी, और दूसरी चीज आपको मैंने बताई सोसाइटी। आपकी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के अंदर आपका फैमिली वातावरण, आपका फ्रेंड सर्किल, आपका ऑफिस वातावरण जहां आप काम कर रहे हैं वहां, और ये सोसाइटी आपकी किससे गवर्न होती है फिर उसके बाद, ये एनवायरमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, पॉल्यूटेंट्स कम होंगे, वो इन चीजों को गवर्न करते हैं। तो अब आप देखिए कि पूरा ये पिरामिड है, ट्रायंगल है, और ये पूरा ट्रायंगल आपका खाना, आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरमेंट, ये तीनों आपको कंट्रोल करते हैं स्पिरिचुअलिज्म को। इसी से आपके भाव आते हैं, इसी से आध्यात्म आता है, और इसी से आपको अच्छी आती है। पॉजिटिव थिंकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। पॉजिटिव थिंकिंग जब आपकी होगी तो आपके अंदर, अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग का साइंस से क्या मतलब है? यस, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना आपका स्टोमक के अंदर पाचन प्रक्रिया अच्छी होगी। पॉजिटिव थिंकिंग से आपके जो स्टोमक है उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है। ये रिसर्च खुद हमारी भी है, और इसके अलावा और बहुत से माइक्रोबायोलॉजिस्ट की भी है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जब आपकी बॉडी में ज्यादा होगी, स्टमक में ज्यादा होगी, आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी, आप हैप्पी फील करेंगे। जब आप हैप्पी फील करेंगे तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी, आपको सुहावना लगेगा, हर चीज आपको स्वादिष्ट लगेगी, हर चीज में आपको आनंद आएगा। सो हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिज्म बोथ आर द पैरेलल थिंग्स। स्पिरिचुअलिज्म इज गवर्न्ड बाय योर फूड हैबिट्स, बाय योर सोसाइटी, बाय योर एनवायरमेंट। टाइम की शॉर्टेज है, मैं इन्हीं लिमिटेड शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और साइंस के अंदर एक लास्ट चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। साइंस में वैज्ञानिकों ने अब ये पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करने के बाद बता दिया है कि हमारे जो डीएनए है इसकी लाइफ 130 इयर्स तक हो सकती है। अब ये 130 इयर्स की लाइफ हम कैसे प्राप्त करें? उसको प्राप्त करने के लिए वी हैव टू रिमेन हैप्पी, बी हैप्पी एंड लेट अदर्स बी हैप्पी। ना आप खुद दुखी रहिए, ना दूसरों को दुख पहुंचाइए। थैंक यू। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूं, ब्रह्म कुमारी से जुड़े सभी महानुभावों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी खैर अभी पिछले 6-7 महीने से जुड़ा हूं, कुछ कार्यक्रम मैंने भी अपने विश्वविद्यालय में कराए हैं और अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द सिस्टम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये दिखा रहे थे कंसंट्रेशन का। और हम चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रम और विश्वविद्यालय भी अपने यहां रखें, क्योंकि खाली किताबी ज्ञान से हमको मानसिक शांति और हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। आजकल का जो जमाना है वो वेल बीइंग, हैप्पीनेस वेल बीइंग का है। और वेल बीइंग अगर आप नहीं है, आपके पास कितना ही धन हो, कुछ भी हो, और अगर आप हैप्पी नहीं है तो सब बेकार है। और हैप्पीनेस के लिए इस तरह की जो संस्थाएं हैं उन्हें आगे आना चाहिए, समाज में कार्य करना चाहिए। इनका कार्य बहुत सराहनीय है और मैं इनको सशक्त नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ये ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमर प्रकाश गर्ग जी का। अभी हमारी हैप्पीनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और हमें मेडिटेशन सिखाने के लिए जिससे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है, तो हमारे अंदर नए नए बैक्टीरिया पैदा हो मेडिटेशन के, तो हमारे बीच में आदरणीय अनुराधा बहन है, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर है एजुकेशन विंग के, मुंबई से हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। आपको 22 साल का अनुभव है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का, 22 साल से आप डेडिकेटेड होकर के संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे वैल्यू एजुकेशन के प्रोग्राम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में आप करते रहते हैं और काफी सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस मुंबई में आप ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं आदरणीय अनुराधा बहन को निमंत्रण देती हूं कि आप आकर के हम सबको राजयोगा मेडिटेशन थ्रू का गाइड करें, के लिए गाइड करें।
ओम शांति। मंचासीन महानुभव आदरणीय निर्मला देवी जी और हमारे प्यारे भाई बहने, योग अर्थात कम्युनिकेशन, संबंध, संबंध हम सबसे अच्छा रखना चाहते हैं। जैसे अभी भी सुना, खुश रहना है और खुश करना है, तो हम स्वयं कितना खुश रहते हैं सारे दिन की दिनचर्या में अगर हम देखें तो हमारे बहुत से मूड बदली होते हैं। सवेरे का जब समय होता है तो हम बहुत अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब शाम होती है तब उतने ही हम एक्टिव रहते हैं या उतना ही हम खुश रहते हैं। अब उतना ही खुश रहना है सारे दिन में तो विशेष हम स्वयं के प्रति सहज रूप से या कहते हैं अपने प्रति हम अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने बारे में ही अच्छे विचार हम करते रहे। राजयोग एक ऐसी विद्या है जिसमें हम स्वयं से बात करें और परमात्मा से बात करें। जो कम्युनिकेशन हमें अपने साथ करना है वो हम कैसे करें, और आज हम जो देख रहे हैं समय चल रहा है वो है, सब क्या कहते हैं, कौन सा युग चल रहा है, हाँ जी, कलयुग। और उस इम्प्योर वातावरण में हम अपने आप को पहले प्योर बनाए, हम अपनी स्थिति को ऊंची बनाए, हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाए, ये बहुत जरूरी है। अगर मैं खुद शुद्ध बन जाता हूं, श्रेष्ठ बन जाता हूं, तो मेरे जो सामने है वो भी इतने शुद्ध और सुंदर अवश्य बन जाते हैं। तो हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, स्वयं को चेक करना है और चेंज करना है, और आत्मा की जो बैटरी है वो इन्हीं वातावरण से, चाहे अपने मन से, चाहे लोगों से, चाहे सारे यूनिवर्स में जो नेगेटिविटी देखते हैं उसके कारण आत्मा जो दूषित हुई है, उस आत्मा को हम शक्तिशाली बनाए। तो वो शक्तिशाली कैसे बन सकती है, वो सोर्स है परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ हम अपनी बैटरी को चार्ज करें। मैं कौन, वो कौन और मुझे क्या करना है। मैं कौन, आत्मा, वो कौन, परमात्मा, मुझे क्या करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, उसके साथ मुझे लिंक जोड़नी है, पावर हाउस से मेरी बैटरी को चार्ज करना है। और अगर मैं रोज रोज चार्ज करती रहूं तो क्या होगा, बैटरी मेरी भी पावरफुल हो जाएगी। तो अब हम थोड़े क्षण के लिए उसका अभ्यास करेंगे। अपने आप को अपने मन को एकदम निश्चिंत होकर बिठाइए। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूं। इस हॉल में सब बैठे हैं, वो सभी चैतन्य शक्ति है। मैं एक दिव्य आत्मा हूं, जगमगाता सितारा, सारे शरीर को शांति के प्रकंपन दे रहा हूं। अनुभव कीजिए ये मेरी शांति की ऊर्जा मेरे मस्तक से लेकर
पैरों तक सभी ऑर्गन में शांति का प्रवाह उत्पन्न कर रही है। मैं आत्मा शांत हूं, शुद्ध हूं। शक्तियों से भरपूर हूं। मैं जिस स्थान पर बैठी हूं, यहां का वातावरण मुझे अपनी एकाग्रता में संपूर्ण मदद कर रहा है। जो मैं एकदम शांत स्थिर हूं, मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं। मैं ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। सर्वशक्तिवान परमात्मा के हर क्षण मेरे साथ है, ऐसा अनुभव हो रहा है। मैं अपने मस्तक पर वो प्रकाश का पुंज, वो सर्वशक्तिमान की किरणें अनुभव कर रहा हूं। जो मेरे अंदर इतनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, जिससे मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूं। हर जन्म में परमात्मा मेरे साथ है, सदा साथ उनका है। बाकी जिसको मैंने अपने बनाए है, वो सदा साथ नहीं देते, मिलते हैं चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिवान सदा मेरे साथ है। उस परमात्मा की मैं प्यारी संतान इस संसार में रहते सर्व को देखते अनुभव कर रही हूं। ये सभी आत्मा रूप में मेरे भाई बहन है। हम सब एक पिता के बच्चे हैं, आपस में हमारा भाई भाई का नाता है। मैं परमात्मा पिता से सर्व गुणों और शक्तियों को अपने अंदर धारण करती हूं। परमात्मा शांति प्रेम सुख आनंद पवित्रता का सागर है। मैं आत्मा यही शांति प्रेम आनंद पवित्रता का स्वरूप हूं। ये स्वरूप का अनुभव मैं यहां पर कर रही हूं। मेरे चारों तरफ शांति शक्ति पवित्रता की वाइब्रेशंस उत्पन्न हो रहे हैं और चारों दिशा में ये प्रवाह जा रहा है जिससे सारा वायुमंडल अपने अंदर रही हुई जो भी कमी है उसको दूर कर रहा है और मैं आत्मा प्योर पॉजिटिव पावरफुल बनती जा रही हूं। मेरा मन खुश है, मेरा शरीर स्वस्थ है, वातावरण शुद्ध है और मेरे संबंध प्यार भरे हैं। विशेष 3 दिन तक सारे दिन में 3 बार यही अभ्यास करते रहे। मैं मन से खुश, शरीर से स्वस्थ, वातावरण में भी शुद्धि की अनुभूति और जो भी मिले उससे मैं प्रेम भरा व्यवहार करूं। रिश्ते मेरे बहुत सुंदर है, ये अनुभव करने की आज से ही शुरुआत करें। ओम शांति शांति।
ओम शांति। बहुत खुशी की, आनंद की अनुभूति हम सबको हुई। हम आदरणीय अनुराधा बहन का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक स्मृति, परमात्म स्मृति में आप हमको ले गए। हमारे बीच में डॉक्टर राधा कृष्णन पिल्लई, डिप्टी डायरेक्टर फॉर चाणक्य इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से आप आए हैं, आपका स्वागत है। He runs academic courses for leaders and aspirants from various fields, including corporate world, politics, academics, military. He has done an extensive research on Kautilya Sir Arthashastra, the well-known book on management written in 4th BC from Chinmaya International Foundation, Kerala, under the guidance of Dr. Gangadharan Nair, the Dean of Adi Shankara Sanskriti University. With nearly 25 years of combined working and business experience, he is a well-known management speaker, trainer, author and consultant. He has written nearly 200 articles and papers for various magazines, newspapers and journals. He has also hosted a radio show, Ask Chanakya, on Moksha channel of World Space Satellite Radio. He has represented India in various national and international conferences, including the World Congress of Philosophy in Athens, Greece, Academy of Management in San Antonio, Texas, Indian Philosophical Congress, and chaired session at Afro-Asian Philosophical Congress, taught in Germany, Dubai, Muscat, Singapore, Indonesia, UK. He has been awarded the prestigious Sardar Patel International Award 2009 and Avishkar Chanakya Innovation Research Award 2013 for his research and contribution in field of management and industrial development. I invite Dr. Radhakrishnan Pillai. He has so many things that he has done and it's been added, but it's very difficult to tell everything about his personality. So I invite Dr. Radhakrishnan Pillai to share something about his life and inspirations.
Om Shanti. Nirmala Didiji ko namaskar. Manch mein viraj sare manubhav and all respected teachers and dignitaries on the other side. The topic of this particular seminar is values and spirituality for overcoming challenges. मैं थोड़ा उसको उल्टा कहूंगा, ओनली वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प अस ओवरकम चैलेंजेस। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दिस इज वन मोर ऑप्शन ऑफ क्लियरिंग चैलेंजेस, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो चलो आखिर में स्पिरिचुअलिटी की ओर आते हैं। व्हेन एलोपैथी डजन वर्क, व्हेन होम्योपैथी डजन वर्क, वील गो टू तिरुपति देन। तो स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट बी द लास्ट ऑप्शन, स्पिरिचुअलिटी शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन। ऐसा कहते हैं, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। तो आप किस बलबूते पे अपनी जिंदगी जीते हैं, ये है अध्यात्म। और किस मूल पे आप अपना जीवन को आधारित देके आगे चलते हैं, उसके ऊपर आपका सारा जीवन का निर्माण होता है। ऐसा हम जब सोचते हैं कि भारत की जो शिक्षण परिस्थिति थी या उनका पूरा जो ढांचा था वो कैसे था, इट वाज ऑलवेज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी एंड वैल्यूज। अब हमको रीइन्वेंट करके उसको ऐड करना पड़ता है, एंड यहां पे ब्रह्म कुमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बुला बुला के बोलना पड़ता है कि प्लीज ऐड वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं काल चक्र में वापस आ रहे हैं। तो समय की जो सीमा है उसमें मैं केवल एक ऐसे शिक्षक के बारे में बात करूंगा जो भारत के जो पूरे इतिहास में एक आदर्श शिक्षक माना गया है, जिसका नाम है चाणक्य। सबने सुना होगा उसके बारे में। तो मेरा पूरा जीवन लास्ट 20 ईयर्स से चाणक्य के ऊपर अध्ययन किया गया है। तो मैं ये कहूंगा कि चाणक्य एक शिक्षक भी था जो आप सारे लोग हैं, और उनकी जो शिक्षण की सिलेबस कैसी थी उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। देखिए, चाणक्य का जो विषय है वो है राजनीति, ही इज क्रिएटिंग लीडर्स। और राजनीति के ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम बनाई है, जिसका ऊपर पूरा लेख लिखा है उन्होंने, किताब लिखी है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र द मेकिंग ऑफ ए लीडर, एक राजा को कैसे निर्माण करना बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, इसके ऊपर काफी लिखा हुआ है। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, ऑल ऑफ योर टीचर्स रिसर्चर्स आप कर सकते हैं। तो पहला जो अध्याय है उसका नाम है विद्या समुद्देश, विद्या का उद्देश्य क्या है। एंड विद्या का उद्देश्य होता है टू मेक योरसेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग टू फेस एनी चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो प्रथम प्रकरण जो फर्स्ट चैप्टर हम कहते हैं, उसका नाम इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसका नाम है आन्वीक्षिकी स्थापना। ये शायद ये शब्द है आन्वीक्षिकी, ये शायद हमने सुना भी नहीं होगा। हमारी शिक्षण परिस्थिति में आन्वीक्षिकी इसको पहला सब्जेक्ट ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम बताया गया। और आपको पता है आन्वीक्षिकी का मतलब क्या है, इट मीन्स फिलोसफी। तो पहले फिलोसफी, फिर बाकी सब, इंक्लूडिंग 1, 2, 3, 4 जो हम लोग नंबर्स बोलते हैं, अल्फाबेट्स। मॉडर्न एजुकेशन टॉक्स अबाउट रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक्स, 3 आर्स। पर चाणक्य टॉक्स अबाउट थिंकिंग विद स्पिरिचुअल बेसिस एज द रूट ऑफ क्रिएशन ऑफ ए ग्रेट लीडर। सो हम लोग अपने बच्चों को सोचने को सिखाते हैं या एग्जामिनेशन देने को सिखाते हैं? आर एजुकेशन सिस्टम हैज एक्चुअली बिकम एन एग्जामिनेशन सिस्टम। वी हैव टू कम बैक टू अंडरस्टैंड वॉट फिलोसफी इज। इन फैक्ट द हाइएस्ट डिग्री दैट यू गेट इन एजुकेशन, डॉक्टरेट, इज एक्चुअली फिलोसफी डिग्री। PhD स्टैंड फॉर डॉक्टर इन फिलोसफी। फिलोसफी आप इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, यहां पे तो पूरा हमारा सेमिनार है, आई विल नॉट गो इन टू दैट। लेकिन आज अगर हम देखें तो 3 जगह से बच्चों को एजुकेशन मिलती है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। दूसरा है हमारे घर पे माँ पिताजी, दादा दादी, नाना नानी। और थर्ड है स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस। इफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रह्मा कुमारीज है, हम अगर नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं होते, सो प्रोबेबली द वैल्यूज एंड एजुकेशन वुड हैव गॉन अवे। एक्चुअली घर पे माता पिता से शुरू होती थी, अनफॉर्चुनेटली आजकल दादा दादी की कहानियां भी खत्म हो गई। दादा दादी तो फेसबुक पे चले गए, लेकिन कहानियां तो बच्चों तक जानी नहीं चाहिए, जानी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि टुडे वी हैव टू कंबाइन ऑल द 3। यहां पे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, और ऑफकोर्स घर पे भी, क्योंकि बच्चे घर से तैयार होकर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं। ये मत सोचना कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलोन है। तो पहले हम अपने आप को टीचर्स से पहले एक साधक और एक पेरेंट की तरह देखें, फिर घर से जो निकलेगा वो एजुकेशन सिस्टम में जाएगा। 2 बातें कहकर अपना स्पीच को समापन करूंगा। उसमें पहली बात यह है कि बेसिकली कोई भी समाज में अगर कोई बदलाव लाना है, चाणक्य ये कहते हैं ऑलवेज अटैक द टॉप। कोई भी समाज में आप देखो तो उसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकर कौन है, वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकर होता है वो है राजा। इसलिए सब लोग वोट करके, यू नो, अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन, यूरोप में एक बहुत बड़ी चेंज हुई, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो राजा को चेंज कर दो सब कुछ ठीक हो जाएगा,
हमारे यहां पे ऐसा नहीं है, राजा के ऊपर भी राजगुरु है। इफ यू कैन चेंज द टीचर्स एवरीबडी विल गेट चेंज। दिस इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेर यू हैव द टीचर्स हायर देन द पॉलिटिशियंस, इज़न्ट इट। और हम अभी अप्रूवल के लिए जाते हैं, पॉलिटिशियन हमको बताओ कैसे यूनिवर्सिटी को चलाना है। आई एम सो प्राउड दैट ब्रह्म कुमारीज व्हेन दे वर ऑफर्ड अ स्टेटस ऑफ एन एकेडमिक यूनिवर्सिटी दे टोल्ड नो एंड सेड हमको हमारा फ्रीडम दे दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट कॉट इन द एकेडमिक सिस्टम बट यूज द एकेडमिक सिस्टम फॉर चेंज। और चाणक्य कैसे राजाओं का निर्माण करता है, उनका नाम या फिर उनकी जो ढांचा है उसको कहते हैं राज ऋषि। केवल राजा नहीं, ऋषि चिंतक। तो ही हैज टू हैव अ बेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यहां से एक आइडिया कॉपी करके वेस्ट में जो चली गई उसको कहते हैं फिलोसोफर किंग। आपने सुना भी होगा वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो हमारे यहां पे केवल राजाओं का निर्माण नहीं किया जाता, हमारे यहां पे ऐसे नेताओं का निर्माण किया जाता है जो समाज में खुद अध्यात्म का प्रैक्टिस करें और दूसरों को भी लेके जाए। रामायण की बात कर रही थी दीदी, बहुत अच्छा आपने बताया था। रामायण में एक छोटी सी घटना है जो आपको पढ़ना है शिक्षक, द प्रेसिडेंट्स मैसेज टू द कंट्री होता है ना एवरी, आप देखते हो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट देते हैं। रामायण में एक ऐसी घटना होती है जब कहते हैं राम राज्य इज एन आइडियल सोसाइटी ऑफ गुड गवर्नेंस। राम कहता है सब कुछ ठीक है लौकिक स्थल पे, लेकिन अभी प्रत्येक प्रजा को एक और काम करनी है, अपनी अध्यात्म की ओर जानी है, मोक्ष की ओर जानी है। ऐसे राजा निर्माण करें कि लोगों को स्पिरिचुअलिटी को लेके आए। एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर्स। एक कहानी बोल के समाप्त करूंगा। कहते हैं कि उनके जो बहुत अच्छा एक शिष्य था चाणक्य का, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एंड ही वॉज अ ग्रेट लीडर। लेकिन होते हैं ना राजाओं के अगल बगल में जो राजाओं को अच्छा उपदेश भी देते हैं और बुरा उपदेश भी देते हैं। सो यू नो, राजाओं को एक विवेक शक्ति होना चाहिए कि किससे एडवाइस ले और किससे एडवाइस ना ले। तो थोड़े थोड़े लोग आके राजा को बोलते थे, हमने ये सुना है, हमने सुना है लोग बोलते हैं कि आप राज्य नहीं करते। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोले मैं राज्य नहीं करता हूं। हाँ वो कहते हो चाणक्य ना आपके गुरु आपके थ्रू राज्य करता है, ही कंट्रोल्स द होल सोसाइटी थ्रू यू, यू आर ओनली अ पपेट। यू नो, अगर वो थोड़ा हिट हो गया उसको और उसको थोड़ा हो गया, फिर वो धीरे धीरे चाणक्य के एडवाइस लेने को जाने का बंद कर दिया। ही स्टॉप गोइंग टू द टीचर। कहते हैं कि जब भी राजा को धर्म संकट हो वो अपने धर्म गुरु के पास जाता है, दैट इज आवर प्रथा। लेकिन उसको आ गया एक ईगो कि मैं राज्य चलाता हूं, लोग कहते हैं कि मेरा गुरु राज्य चलाता है, जाना बंद कर दिया। चाणक्य को यह बात समझ में आ गई, वो जल्दी से जाके उसको, वो ऐसे उसको गुरुकुल में जाना था बट गुरुकुल से वो राजधानी में आ गया। और चंद्रगुप्त मौर्य को देख के थोड़ा हंसा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पे जो गुरुकुल में बैठा हूं आराम कर रहा हूं और तुम यहां पे बैठ के सब दुनिया चला रहे हो। एक बात आप समझ लेना, दुनिया में दो कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनके नसीब में आराम नहीं लिखा गया, दो कैटेगरी, बाकी सब आराम कर लिए। ये दो कैटेगरी अगर आराम कर लिए तो पूरा समाज का सर्वनाश हो सकता है। पहला है शासक और दूसरा है शिक्षक। जिस दिन शासक अपना काम भूल जाएगा उस दिन समाज का नाश होगा। उसी तरह जिस दिन शिक्षक अपना काम भूल जाएगा, वी डोंट आर having the responsibility, sorry, we don't have the whole opportunity to take rest. हम तो अभी government का jobs करने वाले बहुत है ना यहाँ पे। शिक्षक are not supposed to be salaried people. They are responsible people for creating a society. जाइए यहां से, दो तीन दिन का हमारे पास चिंतन मंथन होगा, but don't go back as teachers who will teach an institution. You have to go back as teachers who will build an institution and a complete generation. Om Shanti.
Thanks a lot, Dr. Radhakrishnan ji. I invite Dr. Madhukar Babade. He is the Deputy Director of AICTE Delhi. He is a PhD from IIT Roorkee and having 15 years experience in teaching electrical engineering. He has joined AICTE in 2017 January and published about 6 papers in international journals and attended about 16 international conferences. So I invite Dr. Madhukar Babade to share his experience.
Om Shanti. Dignitaries on dais and dignitaries of the dais. Very good evening. I am not an experienced speaker. I am deputy director in AICT in e-governance. And during last 3 years, during last 3 months, we were working very hard. We were working for the approval process of 11,400 technical institutions in India. Because it was compulsory that we have to complete that approval process before 30th April. This was Supreme Court's mandate that AICT should complete this work. And as we are working in e-governance, we had to complete that process, and therefore we were working very hard, morning 10 o'clock to night 9:30. So we were under stress. I experienced that stress. But luckily, during that period, Brahma Kumari, Behenji Shukla Didi, और दिल्ली सेंटर के भैया भाई वहाँ हमारे ऑफिस में आ गए और उन्होंने इनविटेशन दे दिया कि माउंट अबू में ऐसी कॉन्फ्रेंस है और आप आ जाइए. लकीली मुझे यहाँ आने का मौका मिला. मैं इधर आ गया तो ऐसा महसूस हो गया कि जो स्ट्रेस था वो पूरा गायब हो गया यहाँ पहुँचने के बाद. Within half an hour, I am experiencing that I am not new here. मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं नए प्लेस में आ गया हूँ. ऐसा लग रहा है कि मैं सभी को मैं पहचानता हूँ. यहाँ मेरे भाई है, मेरी दीदी है, और मैं रियल दीदी ने बताया कि यहाँ हम खुद का घर ऐसा लगता है. मुझे भी ऐसा लगा कि पहले के जमाने में जो दुल्हन ससुराल से मायके आती थी तब जैसा वो आनंद उसका होता था वैसा ही आनंद मुझे आज यहाँ आने के बाद हो गया. मैंने यहाँ बोला पहले जमाने की दुल्हन, नॉट दिस इरा ऑफ दुल्हन. ओके, सो आई विल स्पीक, एज टाइम इज लेस, आई विल स्पीक अबाउट द चैलेंजेस इन टेक्निकल एजुकेशन. Under purview of AICT, there are nearly 11,000 technical institutions. And through these technical institutions, we can provide the technical education about 35 lakh students. But if we see the current data, there are about 18 lakh students enrolled. And after their education, after the 4 years, about 7 lakh students are getting placement through this placement process in the final year. Means we observe that there is tough competition for the students to get job. Coming to the entry level of the students. जब 12th के बाद 12th class में बहुत कष्ट करके, बहुत study करके, hard work करके, बहुत अच्छे अच्छे marks achieve करके बच्चे engineering college में admission लेते हैं, तो उस समय हमने ये observe किया कि 12th तक उनका एक प्रेशर रहता है कि अच्छे मार्क्स अचीव करना है. जो अच्छे अच्छे क्लासेस होते हैं, जो अच्छे मार्क्स अचीव करके देते हैं, वहां वो जाते हैं, दिन भर रात भर वो पढ़ाई करते हैं और इंजीनियरिंग में आते हैं. पहले ऐसा लगता है कि हम कॉलेज में आ गए तो वो पहले का जो स्ट्रेस था, स्टूडेंट लाइफ था, वो चला जाएगा और वी कैन एंजॉय द लाइफ. बट कैन वी एंजॉय द लाइफ? Will be they free to enjoy the college life? Generally in technical education, it is not the, means answer to this question is negative one. So why the answer is negative? Why the students are not stress free? We observe that many students are under tension. They are facing peer tension. If we go to the root cause of this tension, और ऐसी भी घटनाएं घटी है कि उसमें बच्चों ने एक सेमेस्टर होने के बाद कुछ कुछ बच्चों ने मतलब वहां प्रोग्रेस नहीं हो गई, कुछ वो एजुकेशन छोड़ के गए, कुछ ऐसे ही केसेस हो गए, इवन एनआईटीज में भी कुछ स्टूडेंट ने सुसाइड भी किया है. तो इतना ये टेक्निकल एजुकेशन का इतना स्ट्रेस क्यों आ जाता है? तो एक स्टडी किया, एक देख लिया, इवन हम भी इंटरनली मतलब आत्म सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो ये हमें समझ में आता है कि ये बच्चों के लिए जो स्ट्रेस है उसके लिए हम रीजनेबल है, हम कारणीभूत है, हम पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्ट्रेस. मीन्स अवर सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्ट्रेस. व्हाई? जब 12th के बाद पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चों को कहां एडमिशन लेना है तो उसी समय वो सोच रहे हैं कि किस इंस्टीट्यूट में ज्यादा प्लेसमेंट है, किस इंस्टीट्यूट में ज्यादा पैकेज मिलता है और उस इंस्टीट्यूट में मेरे बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए. ऐसी वो सोच रहते हैं, वही सोच वो बच्चों पर लादते हैं. और जब बच्चा जहां भी एडमिशन मिलता है वहां जाता है तब उस पर वो स्ट्रेस रहता है कि मुझे उतना पैकेज अचीव करना है. तो उस पैकेज अचीव करने के लिए क्या कंडीशन है कि एक पॉइंट से अबव चाहिए. माइक्रोसॉफ्ट में एंट्री के लिए एक पॉइंट अचीव करना है, इसलिए अगेन द कंपटीशन एंड स्ट्रेस विल स्टार्ट. और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में हम सोचते हैं तो नॉर्थ का बच्चा, यूपी का बच्चा चेन्नई में एडमिशन लेता है, साउथ का बच्चे रुड़की में एडमिशन लेते हैं. मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से जाता है, वहां का रहना, वहां की भाषा सब अलग रहती है और मतलब वहां कम्युनिकेशन गैप रहता है, वहां का जो पहनाव है, खाना है वो अलग होता है और वहां उसको एडजस्ट करना टिपिकल जाता है. उसको पहले वहां के न्यू सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करना है एंड एडिशनल पीछे का प्रेशर रहता है कि अच्छे मार्क्स लाना है. उस प्रेशर की वजह से बहुत से स्टूडेंट को फेलियर आ जाता है या स्ट्रेस आ जाता है. तो एआईसीटी ने जो ये टेक्निकल सिनेरियो है वो चेंज करने के लिए पिछले 3 साल से बहुत प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी है. पूरा टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के लिए 10-पॉइंट एजेंडा डेवलप किया है और सभी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स को बोला है कि वो इंप्लीमेंट करना है. तो उसमें पहला पॉइंट है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम. जब बच्चे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में नए इंस्टीट्यूट में आते हैं तो पहले थ्री वीक्स देर शुड बी नो रेगुलर टीचिंग. 3 वीक का वो इंडक्शन प्रोग्राम उधर रहेगा और उसमें बच्चों को ये ह्यूमन वैल्यूज सिखाए जाएंगे, उनके पास जो स्ट्रेस है वो दूर किया जाता है. इसलिए जो मेडिटेशन, योगा, उस और जीवन का क्या अर्थ है, जीवन क्यों जीना है, वो बच्चों को सिखाने के लिए जो एक्सपर्ट बुला के वहां 3 वीक में वो ट्रेनिंग देते हैं. इसमें क्या है कि सुबह उनको जल्दी उठना है, सुबह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी उसमें इंक्लूडेड है, ताकि वो बाहर से बच्चा आया है लेकिन वो फैकल्टी के साथ मतलब जो फर्स्ट ईयर के फैकल्टी है उनका उसमें भी रोल इंपॉर्टेंट है, वो उसमें उन्हें रहना है दिन भर, तो फैकल्टी के साथ भी उनका इंटरेक्शन रहेगा, बाकी फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन रहेगा. एडिशनली फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज उनको सिखाया जाएगा और उनको ये किया जाएगा कि आपको एक बाकी किसी का टेंशन नहीं लेना है. विदाउट टेंशन यू हैव टू हार्ड वर्क, व्हाट एवर यूर कैपेबिलिटी यू पुट यूर इफर्ट्स, बट डोंट टेक एनी टाइप ऑफ द स्ट्रेस. यू ट्राई टू डेवलप यूर सेल्फ, You try to develop physically as well as mentally. And mentally develop hona hai, mentally strong hona hai, so spirituality and human values are very important. Aur uske saath bachcha jab bahut prayas karega, to khud mein change laega. Jo technical engineering skill jo chahiye, wo atmasat karega, wo develop karega. Aur knowledge bhi wo le lega. Means with the help of knowledge and required skills at national as well as at international level, if these skills are achieved, then there will be no question of the placement. Hamara bachcha, hamare students, duniya ke koi bhi corner mein wo kaam kar sakenge, aur wo unko achha package milega. To package ke piche नहीं लगना है, अपने स्किल्स के पीछे लगना है और उसके लिए ये स्पिरिचुअलिटी, जीवन का जो सही अर्थ है वो समझकर यदि प्रयास करेंगे तो रियली हमारे देश में चेंज मिलेगा और हमारा देश दुनिया में सबसे बड़ा सबसे ताकतवान देश बन सकता है. इसीलिए वो ह्यूमन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दी चैलेंजेस इन टेक्निकल एजुकेशन. सो ऑल टीचर्स आर ऑल फैकल्टी एज वेल एज ब्रह्मा कुमारी इसके जो सेंटर है वो हायर टेक्निकल एजुकेशन से ज्यादा जुड़े और इसमें हम एक अच्छा चेंज, अच्छा भारत का फ्यूचर हम देखेंगे और वो हम अचीव करेंगे. धन्यवाद. ओम शांति.
थैंक यू सो मच डॉक्टर मधुकर फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स. नाउ वी हैव अ वेरी प्रेशियस पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस, रेस्पेक्टेड रेवर्ड राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी. शी इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस सेशन and she is the director of Gyan Sarovar presently. She is also the director of Brahma Kumari's Rajyoga Meditation Centers in Australia, New Zealand and Asia Pacific region, where free meditation and positive thinking classes are provided as a community service. From her base in Sydney, she has taught and lectured worldwide since 1971 on topics ranging from Mind Your Health to Doctors for Tomorrow. Dr. Nirmala completed her medical studies in Bombay, Delhi, and in 1962 she began practicing meditation and convinced for its practical benefits that I decided to incorporate meditation into her treatments. As a medical doctor and a yogi, Didi combines the pragmatic qualities of a doctor with the mystical understanding of Raj Yoga. Hamare beech mein aadarniya Dr. Nirmala Didi hain. Ye bahut garv ki baat hai. Hum aadarniya Didi ji se nimantran karte hain ki nivedan karte hain ki aadarniya Didi hame words of inspiration de.
Manch par upasthit माननीय स्पीकर्स तथा सभा में उपस्थित एजुकेटर्स, आपका ज्ञान सरोवर परिसर में हार्दिक स्वागत है. जीवन में काफी चैलेंजेस आती रहती है हर एक के जीवन में, चाहे बच्चा है, चाहे युवान है, चाहे बुजुर्ग है. और चैलेंज का सामना अपनी अपनी रीत से करते हैं. जब बहुत स्ट्रेस हो जाता है तो कई लोग ड्रग्स शुरू कर देते हैं, अल्कोहल, टबेको, हार्ड ड्रग्स, कुछ भी वो ले लेते हैं ताकि उनको रिलैक्सेशन हो. एंड दैट्स इजी वे टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स. परंतु मेडिटेशन के अभ्यास से हमने देखा है कि रिलैक्सेशन हो जाता है और साथ साथ चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति मिलती है। भागने की दरकार नहीं है, सामना करना है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? आप में से कौन है जिन्होंने ब्रह्मा कुमारियों का कोई सेशन या कोई प्रोग्राम नहीं अटेंड किया? ऐसे कोई है? जरा हाथ उठाना। दो चार हैं। अच्छा, तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉलेज टू अंडरस्टैंड स्पिरिट और द सेल्फ, आत्मा को जानना है, अपने को जानना है, परमात्मा को जानना है और परमात्मा से याद के द्वारा शक्ति लेनी है। तो जितना हम अपने को जानेंगे, भगवान को जानेंगे और याद से अपने में शक्ति भरेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे में शक्तियां भरती जाएंगे। आज हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम कमजोर हैं। कमजोरी के कारण परिस्थिति के वश हो जाते हैं और उस कारण कई लोग हैं सुइसाइड कर लेते हैं, क्योंकि सामना नहीं कर सकते। स्पेशली अभी भी आपने सुना ये यंग एजुकेटेड पीपल और स्टूडेंट्स कई सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसे होता है एग्जाम में अच्छा फेयर नहीं किया है तो रिजल्ट आने के पहले ही सुसाइड कर लेते हैं कि समाज का सामना कैसे करेंगे, पेरेंट्स का सामना कैसे करेंगे, उनको मुंह कैसे दिखाएंगे, इतने हम फेल हो गए। तो समझो आजकल दूसरा चैलेंज है कि आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है, चाहे पेरेंट्स चिल्ड्रन, चाहे हस्बैंड वाइफ, चाहे कलीग्स है, आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है तो मन में शांति नहीं रहती है, क्योंकि जीवन में सबको चाहिए सुख और शांति। Health, wealth and happiness is a main requirement of all people. तो क्या होता है कि meditation के अभ्यास से या spirituality से क्या होता है कि आपको एक तो self respect बढ़ता है, confidence बढ़ता है, courage आती है, पावर टू फेस आता है और उससे क्या होता है कि जो धन दौलत की लालच है नहीं रहती है, क्योंकि आज की दुनिया मटेरियलिस्टिक है, हर एक को धन दौलत चाहिए और उसके कारण क्या होता है, झूठ, पाप, चोरी, भ्रष्टाचार आदि आदि होता रहता है। तो इसलिए उसका सामना करने के लिए जब आंतरिक खुशी है, मन में शांति है, प्यार है, मधुरता है, तो उसके कारण क्या होता है, संबंध में सुधार हो जाता है। और जब परिवार से प्यार मिलता है, परिवार से हम अपने दुख की, स्ट्रेस की लेन देन करते हैं तो वो स्ट्रेस भी कम रहता है। और आजकल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो है ही, इकोनॉमी अप डाउन होती रहती है, कई है नौकरी से छूट जाते हैं, धंधे वाले हैं बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो देखा गया है कि जितना राजयोग मेडिटेशन का या स्पिरिचुअलिटी का अभ्यास करते हैं तो एफिशिएंसी बढ़ती है, ऑनेस्टी रहती है, एंथुसियाज्म रहता है और हम कहेंगे अविनाशी खजाने प्राप्त होते हैं। अभी हम विनाशी खजाने के पीछे, धन के पीछे भागते हैं, परंतु जब आंतरिक खुशी, शांति, प्रेम, मधुरता आदि आदि है तो धन के पीछे भागना नहीं पड़ता है। और भी चैलेंज जो आजकल है पोल्यूशन की, हम कहते हैं मेंटल पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। बाहर का पोल्यूशन का कारण भी हम देखेंगे, मेंटल पोल्यूशन, लोभ के कारण जंगल जलाते रहते हैं और समझो खेती बाड़ी भी नष्ट करके वो कमर्शियल बिल्डिंग्स आदि बनाते रहते हैं। तो पहले तो मन का पोल्यूशन ज्यादा है। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है कि मन पवित्र बनता है और संतुष्ट रहते हैं तो धन दौलत के पीछे पड़ना नहीं पड़ता, चोरी झूठ भ्रष्टाचार नहीं करना पड़ता। तो इसी रीत से देखा गया है कि स्पिरिचुअलिटी से जीवन में वैल्यूज भी आ जाती है और चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति भी आ जाती है। तो आप यहाँ आए हैं, बहुत खुशी की बात है और मैं कहूँ आप के भाग्य की भी बात है कि यहाँ आकर आप कुछ नई बात सीखेंगे और अपने जीवन में कुछ नवीनता लाएंगे, अर्थात जीवन आपका सुखमय, शांतिमय, प्रेममय बन जाएगा। तो आपका फिर से वेलकम है और आशा है कि आप जब जाएंगे यहाँ से ना कुछ सीख के जाएंगे परंतु कुछ बदल के जाएंगे और सदैव के लिए बदलने का व्रत लेके जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी निर्मला फॉर हर ब्लेसिंग्स। हम इस सेशन के अंतिम चरण पर हैं। अभी मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, हमारी आदरणीय दीदी निर्मला सभी हमारे जो भी विशिष्ट मेहमान हैं उनका स्वागत करेंगे और उनको परमात्मा के घर से ईश्वरीय सौगात भी देंगे। शॉल उड़ा करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। प्रभु स्मृति में इसके बाद 2 मिनट बैठ करके कोई भी यहाँ से ना जाएं, जो भी टीचर्स और प्रोफेसर जा रहे हैं, क्योंकि आज ईश्वरीय सौगात मिलने का दिन है तो यहाँ से स्टेज से सभी को गिफ्ट मिलेगा। जो भी इस कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को यहाँ स्टेज पे गिफ्ट मिलेगा, इसलिए वो गिफ्ट लेने के बाद ही आप सब भोजन के लिए जाएं, इसलिए अभी कोई भी भोजन के लिए ना जाएं।
2 मिनट सभी बाबा की याद में बैठेंगे और फिर लाइन में लगकर